आगे सबक देखिए भाई, इफादा फीमा बैन बसरीन व कूफियन इख्तिलाफ अस्दरी के फेल असलस्त या मस्तर, कूफियां ब अव्वल कायलंद व बसरियां बसानी। वसल इख्तिलाफ दर हमी अस्त के फेल माजीरा मादा और असल करार दादा मुश्तक मिनहू बायद गुफ्त व मस्तर रा फरा मुश्तक अजा या बिलाक्स, बस बसरियां ब अमर मानवी इस्तेदलाल में कुनंद। अच्छा भाई, पहले गुज़श्ता सबक का खुलासा सुन लीजिए भाई। गुज़श्ता सबक में कुल और खुज का जो इफादा जिक्र हो रहा था उसका आखिरी हिस्सा हमने पढ़ा था। कुल और खुज का पूरा इफादा फिर सुन लीजिए। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने बतलाया कि कुल खुज और मुर जो है इनके शुरू से दो हमजा हजफ हुए हैं और बाकी सरफी हजरात फरमाते हैं कि ये खिलाफुल कियास हजफ हुए हैं, कोई जाब्ता और कानून नहीं, बगैर जाब्ते के ये हजफ हुए हैं, खिलाफुल कियास हैं, इसलिए वो इनको शाज कहते हैं। जबकि मेरे उस्ताद मोहतरम ऐसी तकरीर फरमाते थे जिससे इनका शुजूज खत्म हो जाता था। वो फरमाते थे कि इन सीगों के अंदर कल्ब मकानी हुआ है, यानी काफ को हमजा की जगह ले गए हैं और हमजा को काफ की जगह ले गए और उसके बाद फिर इसके अंदर यसलु वाला कानून लगा तो कुल और खुज और मुर बन गए भाई। इस पर इश्काल हुआ कि यसलु वाला कानून तो जवाजी है और कुल खुज और मुर उनमें हजफ तो वजूबी है, तो जवाब दिया था कि हम जाब्ते की तकरीर इस तरह करते हैं कि ये सारी चीजें जाब्ते के मुताबिक हो जाएंगी। और वो तकरीर ये कि यसलु वाला कानून जवाजी है लेकिन अगर उस सीगे में कल्ब मकानी हुआ हो या वो फेल अफाल कुलूब में से हो तो फिर इस सूरत में ये जाब्ता वजूबी है और बाकी तमाम सूरतों में जवाजी है। और मुर जो है इसके अंदर तो मुर भी आया है और उमुर भी आया है, तो बतलाया कि ये इसके अंदर कल्ब भी हुआ है और आदम कल्ब भी है, बाज जगह कल्ब हुआ बाज जगह कल्ब नहीं हुआ, जहां कल्ब नहीं हुआ तो उमुर अपनी असल शक्ल पर बरकरार है और जहां कल्ब हुआ तो वहां दोनों हमजा हजफ हो गए और मुर बन गया। तो कुल और खुज में तो कल्ब हुआ है, वहां आदम कल्ब की कोई सूरत नहीं है, हमने अरबों से सिर्फ कुल और खुज सुना है, ओ कुल और ओ खुज नहीं सुना, मालूम हुआ वहां कल्ब भी वजूबी और हजफ भी वजूबी हो गया। जबकि यहां पर उमुर और मुर के अंदर जो है ये अरब दोनों तरह इस्तेमाल करते हैं, कल्ब के साथ भी और गैरे कल्ब के साथ भी, यानी उमुर भी बोलते हैं और मुर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद बतलाया था कि कल्ब मकानी जो है कलाम अरब में बहुत ज्यादा होता है, कभी जो है फा को आयन की जगह ले जाते हैं और आयन को फा की जगह ले आते हैं, जैसे आदुरुन के अंदर हुआ जो कि जमा है दार की। और दूसरी सूरत यह है कल्ब की कि कभी कभार आयन को लाम की जगह ले जाते हैं और लाम को आयन की जगह ले आते हैं, जैसे किसीयुन के अंदर है जो जमा है कौस की। और कभी कभार कल्ब में ऐसा करते हैं कि लाम को उठाकर फा की जगह ले आते हैं और फा आयन की जगह चली जाती है और आयन जो है वो लाम की जगह चला जाता है, जैसे अशिया के अंदर भाई कि ये असल में शैआ उठा। इस पर इश्काल होता है कि भाई आपने अशिया की असल शैआ उ निकाली, क्या जरूरत है इतनी लंबी बात करने की, सीधा सीधा कह दें कि अशिया शय उनकी जमा है बरवजन अफाल भाई, और अफाल जमा का आम वजन है, हर जगह इस्तेमाल होता है, जैसे कलम की जमा अकलाम और जैसे मिसाल की जमा अमसाल, तो ये अफाल ये तो जमा का मशहूर वजन है, तो आप ये कह दें कि अशिया किस वजन पर है, अफाल वजन पर है, ये शैआ निकालने और फिर इसमें कल्ब मानने की क्या जरूरत है। तो जवाब दे दिया था कि भाई अगर कल्ब नहीं मानोगे तो ये अशिया का लफ्ज तो अरब गैर मुनसरिफ बोलते हैं, फिर तो इसके अंदर गैर इंसराफ का कोई सबब नहीं रहेगा और गैर मुनसरिफ होना बगैर सबब के ये खिलाफुल कियास है, لہذا یہ اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ یہاں کس چیز کا اعتبار کر لو، قلب کا اعتبار کر لو. جب قلب کا آپ نے اعتبار کر لیا اور اس کی اصل شیء مان لی تو اب مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ اب یہ بغیر سبب کے غیر منصرف نہیں ہے، بلکہ اس کے آخر میں جو الف ممدودہ ہے شیء، یہ الف کے بعد جو حمزہ آئے یہ کیا ہے؟ الف ممدودہ. تو یہ شیء میں یہ الف کے بعد حمزہ ہے، الف ممدودہ موجود ہے، اور الف ممدودہ یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے بھائی. اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتلایا تھا کہ قلب کو پہچانیں گے کیسے، قلب کی نشانی کیا ہے. تو بتلایا تھا ایک نشانی تو یہ ہے کہ اسی مادے کے دوسرے الفاظ دیکھ لیں، وہاں لفظوں کی ترتیب سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں قلب ہوا ہے. مثلا آدر، آدر میں کیا ہے؟ دال کے ساتھ را جڑی ہوئی ہے، اور جبکہ اسی مادے کے اور لفظ جو ہیں دار ہے، پھر اس کی جمع دور ہے، پھر اس کی تصغیر دویرتن ہے. ان ساروں کے اندر دال کے ساتھ را جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ درمیان میں وو آ رہا ہے. معلوم ہوا آدر کے اندر کیا ہوا ہے؟ قلب ہوا ہے. تو قلب کا پتہ اسی مادے کے اور لفظوں کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے. یا جیسے قیسیون، اسی مادے سے ہم نے دیکھا تو مفرد ہے قوس، اور اسی کا فعل ہم نے دیکھا تو فعل ہے تقوس. تو اور صیغوں کو دیکھا اور الفاظ کو دیکھا تو پتا چلا کہ اصل ترتیب اس میں کیا ہے؟ قاف واو سین. اور قیسیون کے اندر تو ترتیب بدل گئی ہے، معلوم ہوا یہاں قلب ہوا ہے بھائی، جگہ بدلی گئی ہے حروف کی. تو قلب کی ایک نشانی کیا؟ کہ اسی مادے کے اور الفاظ کو دیکھ لیں تو آپ کو قلب کا پتہ چل جائے گا. نیز اسی طرح قلب کی ایک نشانی یہ ہے کہ اگر آپ قلب نہ مانیں تو لفظ کا بغیر کسی سبب کے غیر منصرف ہونا لازم آئے گا. جیسے اشیاء، اشیاء کی اصل اگر آپ افعال نکال لیں یعنی قلب نہ مانے تو پھر تو وہ بغیر سبب کے غیر منصرف رہے گا، خلاف ضابطہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس میں قلب کو مان لیں گے تو پھر وہ ضابطے کے مطابق ہو جائے گا. تو اس سے بھی قلب کا پتہ چل گیا کہ یہاں قلب ہوا ہے. بات سمجھ میں آگئی؟ دوسری نشانی کیا؟ کہ اگر قلب کو نہ مانے تو لفظ کا بغیر کسی سبب کے غیر منصرف ہونا لازم آتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے. اسی طرح کہتے ہیں میرے استاذ محترم فرماتے تھے کہ قلب کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اگر قلب نہ مانے تو صیغے کے اندر اعلال یا تخفیف خلاف قیاس آ جائے گی، یعنی ضابطے کے خلاف ہو جائے گی. جیسے کل، خز اور مر، ان میں اگر آپ قلب نہیں مانتے تو پھر ان کو شاذ کہنا پڑے گا، ان میں جو دو حمزہ حذف ہوئے ان کو خلاف القیاس ماننا پڑے گا. اور اصل کیا ہے؟ یہ اعلال ضابطے کے مطابق ہونا چاہیے یا خلاف القیاس ہونا چاہیے؟ ضابطے کے مطابق ہونا چاہیے. تو لہذا اس کے اندر اگر آپ قلب مان لیں گے تو پھر یہ ضابطے کے مطابق ہو جائے گا، اور یہ جو حمزہ کا حذف ہوا ہے وہ خلاف القیاس نہیں رہے گا. تو اور میرے استاذ محترم فرماتے کہ جس طرح اشیاء کے اندر صرفی حضرات نے قلب مان لیا، کیوں مانا؟ تاکہ یہ خلاف القیاس نہ رہے. اسی طرح کل، خز اور مر میں بھی قلب مان لو تاکہ یہ خلاف القیاس نہ رہیں بھائی. اس کے بعد ایک اور افادہ کل آپ نے پڑھا تھا، اور وہ یہ کہ لم یکن اور ان یکن، یہ جو یکونو ہے اس پر جب کوئی جزم دینے والا عامل داخل ہو تو پھر وہ گر جاتا ہے. کیسے کہتے ہیں؟ ان یکن اور لم یکن، تو وہ گر گیا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے. لیکن اس میں مزید عرب جو ہے ایک اور تبدیلی کرتے ہیں کہ کبھی کبھار اس کے نون کو بھی گرا دیتے ہیں، اور ان یکن کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ ان یکو. اور لم یکن میں کیا کہتے ہیں؟ لم یکو. تو یہ جو نون کا گرنا ہے صرفی حضرات فرماتے ہیں یہ خلاف القیاس ہے. کہتے ہیں میرے استاذ محترم اس کے لیے بھی ضابطہ ذکر فرماتے تھے، اور وہ ضابطہ یہ کہ ہر وہ نون جو فعل ناقص کے آخر میں آئے، हर वो नून जो कहां पर आए, फेले नाकिस के आखिर में आए, जब उस फेले नाकिस पर आमिले जाजिम दाखिल हो जाए तो उस नून को गिराना जायज है। इस पर फिर इश्काल हुआ कि ये तो सिर्फ यकूनु एक फेले नाकिस है जिसके आखिर में नून आ रहा है, तो जाब्ता तो ऐसा हो जो कई अफराद पर सादिक आए, ये तो सिर्फ एक ही फर्द है इसका जिस पर यह जाब्ता सादिक आ रहा है। तो बतलाया था कि भाई हमने तो जाब्ता कुल्ली बनाया है, अगर फर्द एक है तो इससे जाब्ते को कोई नुकसान नहीं होता, अगर कोई और फर्द होता और जाब्ते के तहत ना आता, जाब्ता उसमें ना लगता, फिर जाब्ते के लिए नुकसान था। तो कुल्ली जाब्ते का एक फर्द में बंद होना जाब्ते के लिए नुकसानदेह नहीं। नुकसानदेह क्या चीज है के कुछ अल्फाज जो हैं उनमें जाब्ते के मुताबिक एलाल ना हो रहा हो, शर्तें वगैरह पूरी हों और फिर भी एलाल ना हो रहा हो, ये चीज जाब्ते के लिए नुकसानदेह होती है, क्योंकि इस सूरत में उन अल्फाज को शाज कहना पड़ता है। और हालांकि उलमा की कोशिश ये होती है कि जाब्ता ऐसा बनाए कि कोई चीज भी शाज ना रहे, सारे जाब्ते के अंदर आ जाए। बात समझ में आ गई? तो मालूम हुआ कुल्ली जाब्ते का एक फर्द में बंद होना यह जाब्ते के लिए नुकसानदेह नहीं है। नुकसानदेह यह है कि कोई फर्द ऐसा हो जिस पर जाब्ता न लग रहा हो, भाई शर्तें वगैरह पूरी हैं और जाब्ता नहीं लग रहा, यह जाब्ते के लिए नुकसानदेह है। बल्कि इसकी मिसाल भी मौजूद है, बाज़े मुहक्किकीन ने लफ्ज़ अल्लाह जो है इसके शुरू में जो हमजा है वह हमजा वसली है, और हमजा वसली जो है दरमियान इबारत में गिर जाता है। इसी तरह हर्फ निदा जब दाखिल हुआ तो हमजा वसल दरमियान में आ गया, तो यहां भी वो गिर जाता है। जैसे यबना अखी, देखो इबन का हमजा वसली गिर गया, तो लफ्ज अल्लाह के शुरू में भी हमजा है और यह हमजा वसली है, तो या हर्फ निदा जब इस पर दाखिल हो तो यह हमजा गिरना चाहिए। लेकिन हम अरबों से सुनते हैं कि वो यह हमजा गिराते नहीं है, बल्कि इस बात हमजा के साथ इसको पढ़ते हैं। और कैसे पढ़ते हैं? या अल्लाह या अल्लाह। सूरत समझ में आ रही है? तो इसके लिए बाद मुहक्किकीन ने बाकायदा जाब्ता जिक्र फरमाया है कि अल्लाह के नामों में से वो नाम जिसके शुरू में ऐसा अलिफ लाम आ जाए जो हमजा का इवज हो, हमजा के बदले में आया हो, तो उस अलिफ लाम का जो हमजा है वो उस पर जब हर्फ निदा दाखिल होगा तो वो कतई बन जाएगा। बाज उलमा फरमाते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह इसी तरह है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, यह आलम है और आलम में कोई तब्दीली नहीं होती, जैसे किसी का नाम जैद, हमर, बकर वगैरह है तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, तो यह ज़ाते बारी ताला के लिए आलम है। जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि यह लफ्ज़ अल्लाह जो है इलाहुन से बना है, असल में यह इलाहुन था और इलाह माबूद को कहते हैं, फिर इसके शुरू से हमजा को गिराकर उसके बदले में अलिफ लाम ले आए और फिर लाम का लाम में इदगाम किया तो अल्लाह हो गया। भाई तो ये जो अलिफ लाम है ये हमजा का इवज है और अल्लाह के किसी और नाम के अंदर ऐसा नहीं है कि अलिफ लाम हमजा का इवज हो। तो उन उलमाए मुहक्किकीन ने जाब्ता ये जिक्र फरमाया कि जो भी कि अल्लाह के नामों में से किसी भी नाम के शुरू में ऐसा अलिफ लाम आ जाए जो हमजा का इवज हो, तो जब इस पर हर्फ निदा दाखिल होगा तो ये जो अलिफ लाम जो हमजा का इवज है इसका हमजा कतई बन जाएगा और गिरेगा नहीं, जैसे या अल्लाह। तो उन्होंने कुल्ली जाब्ता बयान किया, लेकिन इसका एक ही फर्द है, अल्लाह के नामों में से सिर्फ लफ्ज अल्लाह में अलिफ लाम हमजा का इवज है और किसी नाम में भी हमजा का इवज नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये भी मेरे उस्ताद मोहतरम के बतलाए हुए जाब्ते की तरह है, वहां भी वो जाब्ता कुल्ली जो है एक फर्द में बंद था और यहां पर भी यह जाब्ता कुल्ली एक फर्द में बंद है और इससे जाब्ते को कोई नुकसान नहीं। उसके बाद अगला इफादा हमने पढ़ा था, अगला इफादा यह था कि कानून यह है कि बाब इफ्तेआल के अंदर अगर फा की जगह या आ जाए या वाव आ जाए और वो या और वाव किसी से बदले ना हो यानी असली हो, तो उस वाव या को ता से बदलकर ता में इदगाम करते हैं, जैसे इत्तासारा, असल में क्या था, ईता सारा, याकुत ता करके तामीद गाम किया तो इत्ता सारा हुआ। और जैसे इत्तकदा असल में क्या था, एव ताकदा, तो वव को ता करके तामीद गाम किया तो इत्तकदा हुआ। लेकिन अगर ये या और वव किसी से बदल कर आए तो फिर इनको ता करके तामीद गाम नहीं करते भाई। जैसे ईतकला और ईतमरा, ईतकला देखो इसमें ये जो या आ रही है ये दरअसल हमजा थी भाई, मादा इसका क्या है अकल अकला, और ईतमरा के अंदर भी जो या है ये दरअसल क्या थी हमजा थी, मादा इसका क्या है अमर भाई अमरा। तो लिहाजा देखो इसलिए इनके अंदर ये या ता होकर तामे मुदगम नहीं हुई। लेकिन इत्तखाजा जो है उसका मादा अखाजा है और वो असल में इताखाजा था, फिर हमजा किससे बदला या से, तो क्या बना इताखाजा। अब ये या जो आई है ये तो हमजा से बदल कर आई है, कानून के मुताबिक इसको ता करके ता में इदगाम नहीं करेंगे, लेकिन हमने अरबों से सुना है वो इसका इदगाम करते हैं और या को ता करके ता में इदगाम करते हैं और क्या बोलते हैं इताखाजा। तो हमने अरबों से इताखाजा सुना है, इताखाजा नहीं सुना भाई। तो ये लफ्ज जो है वो कानून के अंदर नहीं आ रहा था, कानून के मुताबिक तो बदलना नहीं चाहिए था या को, लेकिन अरबों से हमने सुना वो बदलकर बोलते हैं, इसको ता करके बोलते हैं, इत्तखज़ा बोलते हैं भाई। तो इस लफ्ज को तमाम सरफी हजरात ने शाज करार दिया, कहते हैं मेरे उस्ताद मोहतरम ऐसी तकरीर फरमाते जिससे इसका शाज होना खत्म हो जाता था। वो फरमाते थे कि ये इत्तखज़ा जो है इसका मादा अखज नहीं है, अखज़ा नहीं है, बल्कि इसका मादा तखज है, ता खा जाल, या यूं कहो फेल बोल दो तखीजा है भाई, क्या है तखीजा है। अब बात जाब्ते के मुताबिक हो गई कि इत्तखज़ा असल में क्या था, इत्तखज़ा, अब तो मादा तखज़ा हुआ ना, अखज़ा तो ना हुआ, तखाजा। अब इससे बनाओ बाबे इफ्तियाल, फा की जगह क्या आ गई ता, तो क्या बन गया इत ताखाजा, फिर ता का तामीद गाम हुआ। अब तो यहां या वो है ही नहीं, जब या और वो है ही नहीं तो उस जाब्ते के खिलाफ ये है ही नहीं, ये तो बिल्कुल आम जाब्ते के मुताबिक आ रहा है कि दो हर्फ एक जिन्स के जमा हो जाए तो उनका आपस में क्या करते हैं इदगाम करते हैं, तो यहां भी इदगाम हुआ, यहां वो और या तो आई ही नहीं सिरे से, तो अब इसका शाज होना खत्म हो गया। और फिर दलील भी जिक्र फरमाई कि ये जो तखीजा बमाने अखाजा के मैंने जिक्र किया, तफसीर बेजाबी के अंदर भी ये बात जिक्र की है मुसन्निफ ने कि तखीजा किस माना में आता है, अखाजा के माना में आता है भाई। तो कहते हैं बस इत्तखज़ा जो है वो ईतकला और ईतमरा की तरह नहीं है, बल्कि ये इत्तबा की तरह है। जैसे इत्तबा का असल मादा क्या है, तबा ताबाइन, या ये फेल बोल दें तबीआ है, क्या है तबीआ, उसका मादा है, तो इसका मादा भी तखज़ा है भाई। बात समझ में आ गई। अब आइए भाई आज के सबक की तरफ, आगे देखिए इफादा फीमा बैन बसरीन व कूफीन इख्तिलाफ दरी के फेल असल अस्त या मस्तर। अच्छा भाई अगला इफादा मुतालिक है मस्तर और फेल में से असल कौन है, असल कौन है। याद रखिए उलमा के दो गुरोह हैं भाई, एक बसरा वाले हैं और एक कूफा वाले। बसरा में भी बड़े बड़े इलम के पहाड़ गुजरे हैं भाई, कूफा के अंदर भी बड़े बड़े इलम के पहाड़ गुजरे हैं। इन उलमा का बाज मसाइल के अंदर इख्तिलाफ है, जैसे नहव के अंदर इनका तकरीबन कोई 110 मसाइल के अंदर इख्तिलाफ है। जैसे आपने इस्मुन में भी पढ़ा होगा कि बाज फरमाते हैं इसम की असल विस्मुन है और बाज फरमाते हैं कि इसकी असल सेमुन है। तो इस तरह कोई तकरीबन 110 मसाइल हैं इल्म नहव में जिनके अंदर ये उलमा इख्तिलाफ करते हैं। बसरा वाले एक कौल पर हैं तो कूफा वाले दूसरे कौल पर हैं और सारे बड़े बड़े उलमा हैं भाई। तो इसी तरह यहां पर भी ये मस्तर और फेल के अंदर भी इनका इख्तिलाफ है भाई। बसरा वाले कहते हैं कि मस्तर असल है और कूफा वाले कहते हैं कि फेल असल है। तो तवज्जो से भाई। और ये जो इख्तिलाफ है, ये जो बसरा वाले कहते हैं कि मसदर असल है, बात समझ में आ रही है, बस इतना याद रखें, ये भूल जाता है कि कौन किस बात का कायल है। बसरा में स्वाद आ रहा है और मस्दर में भी क्या आ रहा है, स्वाद। तो जो बसरा वाले हैं वो क्या फरमाते हैं, मस्दर असल है। और कूफा के अंदर फा आ रही है और फेल में भी क्या है, फा है, तो कूफा वाले क्या फरमाते हैं कि फेल असल है भाई। तो बसरा वाले फरमाते हैं कि मस्दर असल है और कूफा वाले फरमाते हैं के फेल असल है भाई। और ये बात याद रखिए कि ये इख्तिलाफ मस्दर और फेल के असल और फरा होने में जो है वो मुतलकन इसालत और फरइयत में नहीं है। यानी बसरा वाले ये नहीं कहते कि मस्दर हर एतबार से असल है, और कूफा वाले ये नहीं कहते कि फेल हर एतबार से असल है। यानी इख्तिलाफ किस में है, असल और फरा होने में, लेकिन मुतलकन असल और फरा होने में इख्तिलाफ नहीं है। मुतलकन क्या माना, हर एतबार से मस्दर असल है, और कूफा वाले कहें कि हर एतबार से फेल असल है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। असल इख्तिलाफ इसमें है कि इश्तिकाक के एतबार से असल कौन है और फरा कौन। बसरा वाले कहते हैं इश्तिकाक के एतबार से मस्दर असल है और फेल उसकी फरा, और कूफा वाले कहते हैं इश्तिकाक के एतबार से फेल असल है और मस्दर उसकी फरा है। बात समझ में आ रही है। इश्तिकाक तो आप जानते हैं, इश्तिकाक किसे कहते हैं कि एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज बने, इसको क्या कहते हैं, इश्तिकाक भाई, इश्तिकाक। जो लफ्ज बने उसको कहते हैं मुश्तक, और जिस से बने उसको क्या कहते हैं, मुश्तक मिन हो, मुश्तक मिन हो, और जो बने उसको क्या कहते हैं, मुश्तक। तो बसरा वाले क्या कहते हैं कि मस्दर असल है और फेल फरा है, यानी मस्दर मुश्तक मिन हो है, इससे इश्तिकाक हुआ है, और किसका इश्तिकाक हुआ है, फेल का। तो वो फेल क्या है, मुश्तक है। तवज्जो है, बसरा वाले क्या फरमाते हैं, मस्दर क्या है असल यानी मुश्तक मिन हु, और फेल क्या है, फरा यानी मुश्तक। जबकि कूफा वाले क्या फरमाते हैं कि फेल असल है इश्तिकाक में और मस्दर उसकी फरा। फेल असल है क्या माना, यानी मुश्तक मिनहू है, और मस्दर फरा है यानी मुश्तक है। तो मुश्तक मिनहू और मुश्तक का पता चल गया, मुश्तक मिनहू किसे कहते हैं, जिससे लफ्ज बने, और जो लफ्ज बने उसको क्या कहते हैं, मुश्तक कहते हैं भाई। तो ये जो इख्तिलाफ है असल और फरा होने में, कूफा वाले क्या फरमाते हैं कि फेल असल है, और बसरा वाले क्या फरमाते हैं, मस्दर असल है। ये असल और फरा होने का जो इख्तिलाफ है मुतलक इसालत और फरइयत में नहीं है, बल्कि किस चीज में है, इश्तिकाक के अंदर इख्तिलाफ है। बात समझ में आ रही है, ये इख्तिलाफ मुतलकन इसालत और फरइयत के अंदर नहीं है फेल और मस्दर के, बल्कि इश्तिकाक के अंदर है। इश्तिकाक के मसले में इख्तिलाफ करते हैं कि कौन सा लफ्ज किस से मुश्तक हुआ है, मस्दर फेल से मुश्तक है या फेल मस्दर से मुश्तक है। मुतलकन इसालत और फरइयत में इख्तिलाफ नहीं, मुतलकन इसालत और फरइयत में इसलिए इख्तिलाफ नहीं क्योंकि माना के एतबार से मस्दर असल है बिल इत्तेफाक भाई। कूफा वाले क्या कहते थे, फेल असल है इश्तिकाक में, वरना माना के एतबार से तो कूफा वाले भी कहते हैं मस्दर असल है और फेल उसकी फरा। तवज्जो है, तो माना के एतबार से मस्दर के असल होने पर तो इत्तेफाक है, इसमें तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं। कूफा वाली भी क्या कहते हैं, माना के एतबार से असल कौन, मस्दर है, क्योंकि मस्दर का माना हर फेल में है लेकिन हर फेल का माना मस्दर में नहीं। बात समझ में आ रही है। और इसी तरह अमल, अमल के एतबार से तो बिल इत्तेफाक फेल असल है, मस्तर तो आमिले ज़ईफ है भाई, फेल आमिले कवी है भाई। बात समझ में आ गई? तो इख्तिलाफ किस चीज में? इश्तिका के एतबार से है कि असल कौन और फरा कौन। मुतलक असल और फरा होने में नहीं है, कूफा वाले भी इस बात के कायल नहीं है कि मुतलकन फेल असल है, और बसरा वाले भी इस बात के कायल नहीं है कि मुतलकन मस्तर क्या है असल, बल्कि इख्तिलाफ सिर्फ किस चीज में है? इश्तिका के एतबार से इख्तिलाफ है कि मस्तर असल है या फेल असल, वरना माना के एतबार से, माना के एतबार से तो बिल इतफाक मस्तर असल है, और अमल के एतबार से बिल इतफाक फेल असल है। तवज्जो है, माना के एतबार से बिल इतफाक मस्तर असल है, क्योंकि मस्तर का माना हर फेल में है, लेकिन फेल का माना मस्तर में नहीं। किस तरह? देखो, मस्तर क्या है? जरबुन, मारना, पिटाई करना। यह पिटाई करना जराबा के अंदर है या नहीं? लेकिन साथ जमाना भी है, यह पिटाई हुई है, लेकिन किस जमाने में हुई है? माजी के जमाने में। और यजरीबू के अंदर भी जरब है या नहीं? मारना, मारने का माना है, अलबत्ता जमाना साथ जुड़ा हुआ है, हाल या इस्तकबाल जुड़ा हुआ है। अमर के अंदर इज़रिब, इसके अंदर भी ज़र्ब का माना है, यानी मस्तर वाला माना है, अलबत्ता जमाना जुड़ा हुआ है कि मुस्तकबिल में पिटाई कर। बात समझ में आ रही? तो हर फेल के अंदर मस्तर का माना मौजूद, तवज्जो है, हर फेल के अंदर मस्तर का माना मौजूद, लेकिन हर फेल का माना मस्तर में मौजूद नहीं। जैसे ज़राबा, ज़राबा का क्या माना? पिटाई करना भी, और साथ जमाना भी है। कौन सा जमाना? माजी वाला। अब ये जरबुन, जरबुन के अंदर मारना तो है, लेकिन जमाना है साथ? उसमें तो जमाना है ही नहीं। बात समझ में आ गई? मस्तर का आना हर सीगे में है, लेकिन हर सीगे का माना मस्तर में नहीं है। मालूम हुआ फेल का माना जो है वो किससे बना है? मस्तर के माना से। तो इसमें मारने का माना भी आ गया, और साथ एक माना का इजाफा भी कर दिया, क्योंकि मुश्तक और मुश्तक मिन्हू में फर्क होगा या नहीं होगा? फर्क तो होगा, कुछ फर्क होगा। तो इसमें क्या मिला दिया? साथ जमाना भी मिला दिया। तो देखा, मालूम हुआ ये फेल का माना जो है वो किससे बना है? मस्तर के माना से। तो माना के एतबार से असल कौन? मस्तर है। इसमें इतफाक है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। इसी तरह अमल के एतबार से फेल असल है और मस्तर उसकी फर्क, क्योंकि फेल आमिले कवी है भाई, और मस्तर क्या है? आमिले ज़ईफ है भाई। बात समझ में आ गई? फिर सुनो, फिर सुनो, कूफा और बसरा वालों में इख्तिलाफ है। किस चीज में इख्तिलाफ है? मस्दर और फेल के असल और फरा होने में इख्तिलाफ है, लेकिन ये इख्तिलाफ मुतलक इसालत और फरइयत में नहीं है कि मुतलकन वो कोई एक मस्दर को असल कह रहा हो या फेल को असल कह रहा हो, नहीं, बल्कि इख्तिलाफ सिर्फ किस चीज में है? इश्तिका के अंदर इख्तिलाफ है कि मुश्तक कौन है और मुश्तक मिनहू कौन है। बसरा वाले कहते हैं कि मस्तर असल है, मुश्तक मिनहू है, और फेल जो है वो उसकी फरा है और मुश्तक है। और कूफा वाले कहते हैं कि फेल असल और मुश्तक मिनहू है, और मस्तर जो है वो उसकी फरा है और मुश्तक है भाई। मुतलकन इसालत और फरइयत में इख्तिलाफ नहीं, इसलिए क्योंकि माना के एतबार से तो बिल इतफाक असल क्या है? मस्दर है। और अमल के एतबार से बिल इतफाक असल क्या है? फेल है। तो देखो, वहां तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, तो सिर्फ किस में इख्तिलाफ है? इश्तिकाक में। इतनी तफसील मैं इसलिए भी बयान कर रहा हूं कि आगे चल के ये खुद भी जिक्र करेंगे कि बाज़ उलमा ये उस जिक्र करते हैं मसले को, जैसे मुतलक इसालत और फरइयत में इख्तिलाफ हो। मुतलक इसालत और फरइयत में नहीं इख्तिलाफ, सिर्फ किस एतबार से इसालत और फरइयत? इश्तिका के एतबार से, उसमें फर्क है। माना के एतबार से तो इख्तिलाफ ही कोई नहीं, इसी तरह अमल के एतबार से भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई? आप देखिए भाई, किताब पर तर्जमा इफादा। फीमा बैन बसरीन व कूफीन इख्तिलाफ अस्त। बसरा वालों और कूफा वालों के दरमियान इख्तिलाफ है, यानी बसरा और कूफा के जो उलमाए सर्फ व नहव हैं उनके दरमियान इख्तिलाफ है। दरी इसमें के फेल असल अस्त या मस्तर, के फेल असल है या मस्तर। कूफिया ब अव्वल कायलंद, कूफा वाले जो हैं वो अव्वल के कायल हैं। अव्वल किसका जिक्र आया? फेल के फेल पीछे देखो ना, फेल असल अस्त या मस्त, के फेल असल है या मस्त। तो कूफियां अव्वल कायल अंद, कूफा वाले वो पहली बात के कायल हैं यानी फेल असल है। वह बसरियां बसानी, और बसरा वाले दूसरी बात के कायल हैं यानी मस्तर असल है। वह असल इख्तिलाफ दर हमीन अस्त, और असल इख्तिलाफ इसी में है कि आया फेल माजीरा मादा व असल करार दादा मुश्तक मिनहू बायक गुफ्त व मस्तर्रा फराव मुश्तक अजा या बिलअक्स। कहते असल इख्तिलाफ दर हमीन अस्त, इसी में है कि आया, आया सवाल के लिए आता है, क्या क्या आया का क्या माना क्या। तो कहते हैं इख्तिलाफ इसी में है कि आया फेले माजीरा मादा व असल करार दादा, कि क्या फेले माजी को मादा और असल करार देकर मुश्तक मिनहू बायद गुफ्त, इसको क्या कहना चाहिए, मुश्तक मिनहू कहना चाहिए। वह मस्तर रा फरा व मुश्तक अजा, और मस्तर को उसकी फरा और उससे मुश्तक कहना चाहिए। असल इख्तिलाफ किस में है कि सुनो, फिर सुनो, तर्जमा सुनो। असल इख्तिलाफ दर हमीन अस्त, मैं तर्जमा जिक्र करूंगा, आप फारसी पे नजर रखना। कहते हैं असल इख्तिलाफ इसी में है कि क्या फेले माजी को मादा और असल करार देकर मुश्तक मिनहू कहना चाहिए और मस्तर को फरा और उससे मुश्तक, और उसे मुश्तक कहना चाहिए, या बिलअक्स या इसका अक्स या इसके बरअक्स यानी मस्दर को असल और मुश्तक मिनहू कहना चाहिए और फेल को उसकी फरा और उससे मुश्तक कहना चाहिए। इसमें असल इख्तिलाफ है। इबारत समझ में आ गई। आगे देखिए, पस बसरियां बअम्रे मानवी इस्तेदलाल में कुनंद। अच्छा, यहां से दलील जिक्र कर रहे हैं उनकी। दलील ये कि बसरा वाले जो हैं वो क्या फरमाते हैं कि मस्दर असल है, और वो मानवी दलील पेश करते हैं जिसका ताल्लुक माना से है। वो किस तरह की दलील पेश करते हैं, मानवी यानी जिसका ताल्लुक किससे है, माना से। वो कहते हैं देखो ये जो मस्तर का माना है ये फेल के लिए असल है। मस्तर का माना हर फेल में पाया जा रहा है, हर मुश्तक में पाया जा रहा है, मालूम है मस्तर असल है। वो कहते हैं कि माने मस्तरी जो है वो तमाम अफ़आल में और तमाम अस्माए मुश्तका में पाया जाता है। मालूम हुआ माने मस्तरी असल है सब के लिए, सब के माना के लिए। माने मस्तरी क्या है, एक है मस्तर का माना, एक है फेल का माना, एक है इसमें फाइल का माना, तवज्जो है, एक है इसमें देखो मुश्तका जिक्र कर रहा हूं, फेल का माना, फेल माजी का माना, फिले मुजारे का माना, एक इसी तरह इसमें फाइल का माना, इसी तरह इसमें मफूल का माना, इसी तरह जर्फ का माना, इसी तरह इसमें आला का माना, इसी तरह इसमें तफजील का माना। जितने भी आप मुश्तकात वगैरह हैं उनमें गौर कर लें तो मस्तर का माना इन सब के लिए असल है, इन सब में मस्तर का माना पाया जा रहा है। लेकिन इनके मानी मस्तर में पाए जाए, नहीं भाई ऐसा नहीं। फेल का माना मस्तर में नहीं है, क्योंकि मसलन देखो फेले माजी, फेले माजी में क्या मौजूद, मारने का माना भी है और जमाने माजी भी है, और जर्ब उनके अंदर तो जमाने माजी नहीं। या इसी तरह फेले मुजारे देख लो, फेले मुजारे में हाल या इस्तकबाल है, तो मारने का माना भी है और हाल या इस्तकबाल, हालांकि मस्तर में तो हाल या इस्तकबाल वाला माना नहीं। लिहाजा फेल का माना, माना की बात कर रहा हूं, फेल का माना मस्तर के माना के लिए असल नहीं, क्योंकि वो तो वहां पूरा मौजूद ही नहीं है। फेल के माना में तो जमाना भी है लेकिन वो जमाना तो मस्तर में मौजूद नहीं। अगर आप फेल के माना को, लफ्ज की बात नहीं कर रहा, माना की बात कर रहा हूं, तवज्जो है, फेल के माना को मस्दर के माना के लिए असल करार दें तो फिर इसका तो मतलब है फेल का पूरा माना मस्दर में होना चाहिए। लेकिन फेल का तो पूरा माना मस्दर में है ही नहीं, फेल के अंदर तो मारने का भी माना है और जमाना भी है, और मस्दर में मारना तो है लेकिन जमाना नहीं। तो मालूम हुआ फेल का माना, तवज्जो है, फेल का माना, लफ्ज की बात नहीं कर रहा, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, माना, मालूम वो फेल का माना मस्तर के माना के लिए असल नहीं, बल्कि मस्तर का माना फेल के माना के लिए असल है। किस तरह, ضرب, ضرب کا کیا معنی؟ مارنا. وہی مارنا بھی ملایا اور ساتھ اس کے ساتھ زمانہ بھی ملا لیا, تو کس کا معنی بن گیا؟ فعل کا معنی بن گیا. فعل اس کے ساتھ اگر ماضی کا معنی ملایا تو فعل ماضی والا معنی بن گیا. اسی مارنے کے ساتھ اگر حال یا استقبال والا معنی ملایا تو کس کا معنی بن گیا؟ مضارع والا معنی بن گیا. معلوم ہوا معنی کے اعتبار سے اصل کون؟ مصدر ہے. مصدر کا معنی وہ اصل ہے تمام افعال و اسماء مشتقات کے معنی کے لیے. تو جب معنی کے اعتبار سے مصدر اصل ہے تو لفظوں کے اعتبار سے بھی مصدر کو کیا مان لو. پھر سنو, تو جب معنی کے اعتبار سے مصدر اصل ہے سب کے لیے تو لفظوں کے اعتبار سے بھی مصدر کو سب کے لیے اصل مان لو کہ یہ سارے لفظ مصدر کے لفظ سے بنے ہیں. مصدر مشتق منہ ہے اور یہ سارے اس سے مشتق ہیں. دلیل سمجھ میں آ گئی. حاصل دلیل کیا ہوا کہ بصرہ والے فرماتے ہیں کہ مصدر کا معنی وہ اصل ہے اور مادہ ہے تمام افعال کے لیے بھی اور تمام مشتقات کے معنی کے لیے بھی. جب مصدر کا معنی سب کے لیے اصل ہے آپ بھی تسلیم کرتے ہیں. اے کوفہ والو آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مصدر معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ اصل ہے. میں نے بتایا نا ابھی معنی کے اعتبار سے بال اتفاق مصدر کیا ہے؟ اصل. تو جب معنی کے اعتبار سے آپ بھی مانتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور فعل وغیرہ اس کی فرع, تو لفظوں کے اعتبار سے بھی آپ مان لیں کہ مصدر اصل ہے اور فعل وغیرہ اس کی فرع یعنی وہ مصدر ہی سے بنے, یعنی ان کا اشتقاق کس سے ہوا ہے؟ مصدر سے ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. جبکہ کوفہ والے وہ لفظی دلیل ذکر کرتے ہیں. بصرہ والے کون سی دلیل ذکر کرتے تھے؟ معنوی, معنی کو دلیل بناتے تھے. اور کوفہ والے لفظی دلیل ذکر کرتے ہیں, لفظ کو دلیل بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اعلال کے اندر اکثر مصدر جو ہے وہ فعل کے تابع ہوتا ہے. اعلال کے اندر اکثر مصدر جو ہوتا ہے وہ فعل کے تابع ہوتا ہے. فعل میں اعلال ہو تو مصدر میں بھی اعلال ہوتا ہے. جیسے قاما میں اعلال ہوا تو قیامن میں بھی اعلال ہوا. قیامن اصل میں کیا تھا؟ قوامن. تو یہاں وہ یا سے بدل گیا کیونکہ قاما میں اعلال ہوا تھا. تو کوفہ والے کیا کہتے ہیں؟ لفظی دلیل ذکر کر رہے ہیں. اعلال لفظوں میں ہوتا ہے کہ معنی میں ہوتا ہے؟ اعلال لفظوں میں ہوتا ہے. تو یہ لفظی دلیل ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں دیکھو فعل کے اندر اعلال ہو تو مصدر میں بھی اعلال ہوتا ہے, اور فعل میں اعلال نہ ہو تو مصدر میں بھی اعلال نہیں ہوتا. جیسے قاواما یہاں وہ میں اعلال نہیں ہوا تو قیوامن جو مصدر ہے اس کے اندر بھی اعلال نہیں ہوا. تو جب اعلال میں فعل اصل ہے مصدر کے لیے اور اعلال ایک لفظی چیز ہے تو اشتقاق کے اندر بھی فعل کو اصل قرار دینا چاہیے کیونکہ اشتقاق بھی لفظی چیز ہے. ایک لفظ سے دوسرا لفظ بن رہا ہے بھائی, تو اشتقاق بھی کیا ہے؟ لفظی چیز. اور ہم نے جو دلیل ذکر کی وہ بھی کون سی ہے؟ لفظی ہے, لفظ سے متعلق ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو بصرہ والے کس طرح کی دلیل دیتے ہیں؟ معنوی. معنوی یعنی معنی سے متعلق ہے. اور کوفہ والے کس طرح کی دلیل دیتے ہیں؟ لفظی یعنی لفظ سے وہ متعلق ہے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے. دیکھیے اب ترجمہ کہتے ہیں پس بصریاں امر معنوی استدلال میں کنند. پس بصرہ والے جو ہیں وہ امر معنوی سے یعنی ایک معنوی چیز سے استدلال میں کنند استدلال کرتے ہیں. استدلال کہتے ہیں دلیل بنانا. وہ ایک معنوی چیز سے دلیل بناتے ہیں. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں بصرہ والے جو ہیں وہ ایک معنوی چیز سے دلیل بناتے ہیں. تو کہتے ہیں بصریاں امر معنوی استدلال میں کنند. بصرہ والے جو ہیں ایک امر معنوی سے استدلال کرتے ہیں کہ معنی مصدری مادہ و اصل برائے معانی جمیع افعال و اسماء مشتقہ است. کہ مصدری معنی جو ہے وہ مادہ اور اصل ہے برائے معانی جمیع افعال و اسماء مشتقہ, تمام افعال اور اسماء مشتقہ کے معانی کے لیے. معنی مصدری جو ہے وہ معنی مصدری یعنی مصدر کا جو معنی ہے وہ اصل اور مادہ ہے کس کے لیے؟ تمام افعال اور اسماء مشتقہ کے معانی کے لیے. مصدر کا معنی یہ کیا ہے؟ اصل اور مادہ ہے کس کے لیے؟ تمام افعال کے لیے یا افعال کے معنی کے لیے؟ افعال کے معنی کے لیے. اور تمام اسماء مشتقہ کے لفظ کے لیے یا معنی کے لیے؟ معنی کے لیے. تو معنی مصدری وہ مادہ اور اصل ہے تمام افعال اور تمام اسماء مشتقہ کے معنی کے لیے. ان کے معنی کے لیے مصدر کا معنی اصل ہے اور مادہ ہے اور یہ اس کی فرع ہیں. جب معنی کے اندر وہ اس کی فرع ہیں تو لفظ کے اندر بھی ان کو اس کی فرع ہونا چاہیے. پس لفظ مصدر ہم مادہ و اصل برائے جمیع مشتقات باشد. پس مصدر کا لفظ بھی تمام مشتقات کے لیے مادہ اور اصل ہوگا. دلیل سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ وکوفیاں و امور لفظیہ استدلال میں کنن, اور کوفہ والے جو ہیں وہ لفظی چیزوں سے استدلال کرتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر اکثر مصدر تابع فعل, اکثر مصدر جو ہے وہ فعل کے تابع در اعلال میں باشد, اعلال میں ہوتا ہے. اکثر مصدر جو ہے وہ اعلال میں فعل کے تابع ہوتا ہے. فعل میں اعلال ہو تو مصدر میں ہوتا ہے, فعل میں اعلال نہ ہو تو مصدر میں بھی نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں مثلا اکثر مصدر تابع فعل در اعلال میں باشد. مثلا اکثر جو ہے مصدر وہ اعلال میں فعل کے تابع ہوتا ہے. وہ اعلال از امور لفظیات, اور اعلال جو ہے وہ لفظی امور میں سے ہے, لفظی چیزوں سے ہے, یعنی اس کا تعلق لفظ سے ہے. تو کہتے ہیں وہ اعلال از امور لفظیات, اور اعلال جو ہے وہ لفظی امور میں سے ہے. پس مصدر را فرائے فعل در لفظ و مشتق ازا میں باید گفت. پس مصدر کو بھی فرع فعل, فعل کی فرع در لفظ کس میں؟ بس مصدر کو بھی لفظ میں فعل کی فرع و مشتق ازا میں باید گفت, اور اس سے مشتق کہنا چاہیے. اے بصرہ والو, آپ نے دلیل میں معنی کو ذکر کیا, حالانکہ اشتقاق کا تعلق لفظوں سے ہوتا ہے. تو آپ نے ایسی دلیل ذکر کی جس کا تعلق معنی سے ہے, اور ہم نے ایسی دلیل ذکر کی جس کا تعلق کس سے ہے؟ لفظ سے ہے. لفظ سے ہے. اور کس چیز کے لیے یہ دلیلیں ذکر کی جا رہی ہیں؟ اشتقاق کے لیے. اور اشتقاق کا تعلق تو لفظ سے ہے, لہذا اس کے لیے کوئی لفظی دلیل ذکر کرو, معنوی دلیل ذکر نہ کرو. اور لفظی دلیل ہمارے پاس موجود ہے, لہذا معلوم ہوا کہ جب اعلال کے اندر یعنی اور لفظی چیزوں کے اندر فعل اصل ہے, یعنی جیسے اعلال میں فعل اصل ہے, تو اشتقاق جیسی لفظی چیزوں میں بھی فعل کو کیا قرار دے دو؟ اصل قرار دے دو, اور مصدر کو اس کی فرع قرار دے دو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی دوبارہ ترجمہ دیکھیں. کہتے ہیں وہ اعلال از امور لفظیہ است, پس مصدر را فرع فعل در لفظ و مشتق ازا میں باید گفت. اور اعلال لفظی امور میں سے ہے, لفظی چیزوں میں سے ہے. پس مصدر کو لفظوں میں فعل کی فرع اور اسے مشتق جو ہے میں باید گفت کہنا چاہیے. یہاں تک تو وہ اصل اختلاف ذکر کر رہے تھے کہ اصل اختلاف کس میں ہے؟ اشتقاق میں ہے. اور پھر ایک ایک دلیل بھی دونوں کی ذکر کر دی کہ بصرہ والے دلیل میں معنی کو ذکر کرتے ہیں, اور کوفہ والے دلیل میں لفظ کو ذکر کرتے ہیں. اب آگے ان کے استاذ محترم کی تقریر شروع ہو رہی ہے. وہ کوفہ والوں کے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں. عام علماء کیا کرتے ہیں؟ عام علماء وہ بصرہ والوں کے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں. اسی لیے آپ نے ابواب الصرف میں بھی پڑھا کہ مصدر سے ان چیزوں کا اشتقاق ہوتا ہے. دیکھا وہاں مصدر کو اصل قرار دیا اشتقاق میں, اور فعل وغیرہ کو اس کی فرع قرار دیا. تو عام علماء کس مذہب کو قوی قرار دیتے ہیں؟ بصرہ والوں کے. کہتے ہیں نہیں, میرے استاذ محترم فرماتے تھے کہ نہیں, کوفہ والوں کا مذہب قوی ہے اور زبردست ہے, کیونکہ اشتقاق ایک لفظی معاملہ ہے, تو اس کے لیے کوئی لفظی دلیل ہونی چاہیے. جبکہ بصرہ والے جو ہے وہ ایسی دلیل ذکر کر رہے ہیں جس کا تعلق کس سے ہے؟ معنی سے ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے کہتے ہیں جناب استاذ المرحوم مذہب کوفیین را ترجیح میں دادند، کہتے ہیں میرے استاذ محترم جو ہیں وہ کوفہ والوں کے مذہب کو ترجیح دیتے. وفیل واقع دلائل قویہ بر رجحان مذہب کوفیین قائم است. وفیل واقع اور واقع کے اندر دلائل قویہ، قوی دلائل بر رجحان مذہب کوفیین، رجحان کا معنی راجح ہونا، کوفہ والوں کے مذہب کے راجح ہونے پر قائم است موجود ہیں. کیا فرما رہے مصنف؟ کہ واقع کے اندر کوفہ والوں کے مذہب کے راجح ہونے پر بڑے قوی دلائل موجود ہیں. عام علماء تو کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ بصرہ والوں کے مذہب کو. لیکن واقع کے اندر اگر آپ غور کریں، تحقیق کریں اور گہری نظر سے دیکھیں تو کوفہ والوں کے دلائل زیادہ قوی ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وفی الواقع دلائل قویہ بر رجحان مذہب کوفیین قائم است، اور واقع میں بڑے قوی دلائل مذہب کوفیین کے راجح ہونے پر موجود ہیں. اول ان کے، اب تین دلائل ذکر کریں گے کوفہ والوں کے مذہب کے راجح ہونے پر. کتنے دلائل ذکر کریں گے؟ تین دلائل. کہتے ہیں میرے استاد محترم ذکر فرماتے تھے، ان کو اب ذکر کر رہے ہیں. اول ان کے، پہلی دلیل یہ کہ گفتگو در اشتقاق است، کہ گفتگو کس بارے میں ہے؟ اشتقاق کے بارے میں. یعنی یہ بحث کس بارے میں چل رہی ہے؟ اشتقاق کے بارے میں چل رہی ہے، کہ اشتقاق میں مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے. توجہ ہے؟ یہ گفتگو اور یہ بحث کس بارے میں ہو رہی ہے؟ اشتقاق کے بارے میں ہو رہی ہے. اور اشتقاق کس میں سے ہے؟ لفظی چیز ہے یا معنوی چیز ہے؟ لفظی چیز ہے. معنی سے بھی کہتے ہیں اس کا تعلق ہے، کیونکہ جب لفظ بدلتا ہے تو معنی بھی ساتھ ساتھ بدلتے چلے جاتے ہیں، لیکن اصل تعلق اس کا کس سے ہے؟ لفظ سے ہے. لہذا کہتے ہیں، ادھر دیکھیے، لہذا کہتے ہیں مصدر اور فعل کے لفظوں پہ غور کرو، ذرا لفظوں پہ ذرا غور کر کے دیکھو کس میں مادہ اور اصل بننے کی صلاحیت ہے اور کس میں مادہ اور اصل بننے کی صلاحیت نہیں. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کس میں غور کرنا ہے، فعل اور مصدر کے لفظ میں. لفظ میں، کیونکہ بات کس کی چل رہی ہے؟ اشتقاق کی. اور اشتقاق کس چیز سے تعلق رکھتا ہے؟ لفظ سے. تو اشتقاق ایک لفظی چیز ہے، تو اس کے لیے ہمیں فعل اور مصدر کے لفظوں میں غور کرنا چاہیے. ایک فعل کا لفظ ہے، ایک مصدر کا لفظ ہے، کس میں مادہ بننے کی صلاحیت ہے اور کس میں مادہ بننے کی صلاحیت نہیں. آپ اسی میں غور کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. فعل کا لفظ ہی آپ کو بتا دے گا کہ یہ مصدر کے لیے مادہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن مصدر کا لفظ فعل کے لیے مادہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ مصدر کے اندر اکثر ایسے حروف آ جاتے ہیں جو زائد ہوتے ہیں، فعل میں وہ نہیں ہوتے. مثلا دیکھو اکرما، اور ایک ہے اس کا مصدر کیا؟ اکرام. اکرما اور اکرام میں غور کرو کس میں مادہ بننے کی صلاحیت ہے. اکرما کے اندر شروع میں حمزہ ہے، پھر کاف ہے، پھر را ہے اور پھر میم، اور یہ چاروں اکرام میں موجود ہیں یا نہیں؟ یہ چاروں اکرام میں موجود ہیں، البتہ اس میں درمیان میں ایک الف زائد آ گیا. اصل مادہ تو وہ ہے جو پورا کا پورا موجود ہو، اور اکرما پورا کا پورا اکرام میں موجود ہے یا نہیں؟ پورا کا پورا اکرام میں موجود ہے. لیکن اگر آپ اکرام کو اصل قرار دیں تو اکرام پورا اکرما میں ہونا چاہیے یا نہیں؟ پورا ہونا چاہیے، لیکن اکرام پورا کا پورا اکرما میں ہے نہیں. اس کے اندر جو ایک الف ہے وہ تو اکرما میں نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مادہ تو وہ ہونا چاہیے جو پورا کا پورا دوسرے کے اندر پایا جائے. بھائی ہاں، کچھ زائد ہو جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن مادہ تو پورا ہونا چاہیے. تو اکرما تو پورا اکرام میں موجود، لیکن اکرام کے سارے حروف تو اکرما میں موجود نہیں. معلوم ہوا مادہ اور اصل ہونے کی صلاحیت کس میں ہے؟ فعل میں ہے، مصدر میں نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ فعل میں مادہ اور اصل بننے کی صلاحیت ہے، مصدر میں مادہ اور اصل بننے کی صلاحیت نہیں. और मिसालें देख लें भाई, बेशुमार मिसालें आपको मिलेंगी भाई। मसलन हदा यहदी, इससे मस्दर आता है हिदायतुन। क्या आता है? हिदायतुन। तो मस्दर है हिदायतुन और फेल है हदा। हदा में देखो हा दाल या, और ये तीनों हरूफ हिदायतुन में मौजूद हैं या नहीं? तो फेल के सारे हरूफ क्या हैं? मस्दर के अंदर मौजूद है। लेकिन मस्दर को अगर देखें आप, हिदायतुन, इसके अंदर तो एक अलिफ भी है, इसके आखिर में तो गोलता भी है, तो क्या ये हिदायतुन पूरा का पूरा हदा में मौजूद है, यहदी में मौजूद है, इहदी में मौजूद है? नहीं भाई। तो मालूम हुआ मादा और असल बनने की सलाहियत किसके अंदर है? फेल के अंदर है भाई। और देख लें, जैसे देखो भाई, कातला युकातिलु मुकातलतन, मुकातलतन, कातला, इसके क्या क्या हुरूफ हैं? काफ, अलिफ, ता और लाम, और ये सारे के सारे हुरूफ मुकातलतुन इसमें मौजूद है या नहीं? ये सारे मौजूद हैं। काफ भी है, अलिफ भी है, ता भी है, लाम भी है। लेकिन मुकातला के अगर सारे हरूफ देखें, मुकातला के तो शुरू में मीम भी है, आखिर में गोलता भी है, वो तो कातला के अंदर मौजूद नहीं। तो फेल के सारे हरूफ तो मस्तर में मौजूद हैं, लेकिन मस्तर के सारे हरूफ तो फेल के अंदर मौजूद नहीं। तो किसमें मादा बनने की सलाहियत है? फेल के अंदर मादा बनने की सलाहियत है, मस्तर में मादा बनने की सलाहियत नहीं। मालूम हुआ फेल असल है और मस्तर क्या है? उसकी फरा है इश्तिकाक के अंदर भाई। बात समझ में आ रही? आप लफ्जों में गौर कर लें तो पता चलेगा कि फेल से तो मस्तर का इश्तिकाक हो सकता है, मस्तर से तो फेल का इश्तिकाक नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके लिए मादा बनने की सलाहियत ही नहीं रखता। ये किसकी दलील चल रही है? कूफा वालों की। कितने दलाइल जिक्र करेंगे? तीन भाई। पहली दलील चल रही है भाई, अब देखिए किताब पर। अव्वलीन के पहली दलील ये कि गुफ्तगु दर इश्तिकाक अस्त, कि गुफ्तगु किस बारे में है? इश्तिकाक के बारे में। गुफ्तगु यानी बातचीत, यानी बहस, बहस, बहस जो है वो इश्तिकाक के बारे में है। वह इश्तिकाक अज उमूर लफ्जियास्त, और इश्तिकाक लफ्जी चीजों में से है। अगरचे अलाका बामाना हम दारद, अगरचे ये माना के साथ भी ताल्लुक रखता है। अलाका कहते हैं ताल्लुक, इश्तिकाक का ताल्लुक माना से भी है, लेकिन दरअसल इस ये क्या है? लफ्जी चीज भाई। इश्तिकाक में एक लफ्ज से दूसरा बनेगा। मसलन बसरा वालों की बात मानते हैं हम, फर्ज करो जर्ब से क्या बना? जाराबा। तो माना भी बदला या नहीं? और जाराबा से यजरीबू बना तो माना बदला या नहीं? और यजरीबू से जारिबुन बना तो माना भी बदला या नहीं? तो देखो माना के साथ भी इश्तिकाक का ताल्लुक है, माना भी बदलता चला जाता है, लेकिन असल ताल्लुक इसका किसके साथ है? लफ्ज के साथ है, माना के साथ नहीं। असल ताल्लुक किससे है? लफ्ज के साथ। तो इश्तिकाक जब लफ्जी चीज है तो इसके लिए लफ्जी दलील होनी चाहिए, लफ्जों में गौर करना चाहिए भाई, माना को दलील नहीं बनाना चाहिए। यह माना है, कहते हैं वह इश्तिकाक अज उमूर लफ्जियस्त, इश्तिकाक जो है वह लफ्जी चीजों में से है। अगरचे अलाका बमाना हम दारद, अगरचे माना के साथ भी ताल्लुक रखता है। पस दर लफ्ज फेल माजी व मस्तर तअम्मुल बायद कर्द, तामुल का माना गौर। बस जो है फेले माजी के लफ्ज और मस्तर के लफ्ज में तामुल बायत कर गौर करना चाहिए कि आया लफ्ज फेले माजी लियाकत मादा बूदन में दारत या लफ्ज मस्तर। आया, आया का क्या तर्जमा है? क्या क्या कि क्या लफ्ज फेले माजी, फेले माजी का जो लफ्ज है लियाकत मादा बूदन में दारत, ये मादा होने की सलाहियत रखता है। लियाकत का माने सलाहियत, लियाकत मादा बूदन में दारत, यह मादा होने की सलाहियत रखता है या लफ्ज मस्तर? या लफ्ज मस्तर। बात समझ में आ रही? फिर देखो, कहते हैं पसदर लफ्ज फेले माजी और मस्तर तअम्मुल बायत कर द, पस फेले माजी और मस्तर के लफ्ज में गौर करना चाहिए कि आया लफ्ज फेले माजी लियाकत मादा बूदन में दारत या लफ्ज मस्तर, कि क्या फेले माजी का लफ्ज जो है वो मादा बनने की सलाहियत रखता है या लफ्ज़े मस्दर। वाइंद तअम्मुल, और गौर व फिक्र के वक्त मुद्रक में गर्दद, ये बात मालूम हो जाती है। मुद्रक में गर्दद मालूम, वाइंद तअम्मुल मुद्रक में गर्दद, और गौर व फिक्र से ये बात मालूम हो जाती है कि लफ्ज़े फेल लियाकत मादियत दारद न लफ्ज़े मस्दर, कि लफ्ज़े फेल जो है वो मादा होने की सलाहियत रखता है, ना कि लफ्ज मस्दर। मादियत मादा होना, किसी लफ्ज से मस्दर जब बनाते हैं ना तो उसके आखिर में याए मुशद्दद और गोलता मिला देते हैं। किसी लफ्ज से आप मस्दर बनाना चाहते हैं, तवज्जो है, किसी लफ्ज से मस्दर बनाना चाहते हैं तो उसके आखिर में याए मुशद्दद और गोलता मिला दें तो वो मस्दर बन जाएगा। जैसे फाइल, अब फाइल से आप मस्दर बनाना चाहते हैं तो याए मुशद्दद और गोलता मिला दें, फाइलियत। क्या माना? अब मस्दर वाला तर्जमा करो, फाइल होना, मस्दर के आखिर में ना आता है ना, तो फाइल से क्या बन गया? फाइलियत। क्या माना? फाइल होना। और इसी तरह मादा से क्या बन गया? मादियत, यानी मादा होना। तो कहते हैं वइंदा ताअम्मुल मुदरक में गदत के लफ्ज़ फिल लियाकत मादियत दारत न लफ्ज़ मस्दर, और गौर और फिक्र से ये बात मालूम हो जाती है कि फेल का जो लफ्ज है वो मादा होने की सलाहियत रखता है, न लफ्ज मस्दर, न के लफ्ज मस्दर। जेरा के, जेरा का क्या तर्जमा? इसलिए के, क्योंकि, या इसलिए के। जेरा के जुमला हरूफे के दर फेले माजी याफ्ता में शवद, इसलिए क्योंकि वो सारे हरूफ जो के फेले माजी के अंदर पाए जाते हैं, बिस जरूरत दर मस्दर याफ्ता में शवद, वो यकीनी तौर पर मस्दर में पाए जाते हैं। वला अक्स, और इसका अक्स नहीं है। बिस जरूरत का लफ्ज, बिस जरूरत का लफ्ज किताबों में आए तो इसका माना होता है बदीही तौर पर या यकीनी तौर पर। बदीही और नजरी जानते हैं या नहीं? बदीही वो जो गौर और फिक्र के बगैर फौरन ही समझ में आ जाए उसे बदीही कहते हैं, और जिस चीज में गौर और फिक्र करना पड़े उसे नजरी कहते हैं। तो बिस जरूरत का क्या तर्जमा? बदीही तौर पर, यानी बगैर गौर और फिक्र के ये बात समझ में आ जाती है। या बिस जरूरत का क्या तर्जमा कर लें? यकीनी तौर पर, इसमें किसी किस्म का शक और शुबा नहीं। फिर तर्जमा देखो, जेरा के जुमला हरूफे के दर फेले माजी याफ्ता में शवद, इसलिए क्योंकि वो सारे हरूफ जो के फेले माजी में पाए जाते हैं, बिस जरूरत दर मस्तर याफ्ता में शवद, वो यकीनी तौर पर मस्तर में पाए जाते हैं, या बदीही तौर पर वो मस्दर में पाए जाते हैं। वला अक्स, और इसका अक्स नहीं है, यानी मस्दर के सारे हुरूफ फेल के अंदर नहीं पाए जाते। बात समझ में आ गई? यानी बदीही तौर पर माजी के सारे हुरूफ किस में है? मस्दर में है। गौर फिक्र की जरा भी जरूरत नहीं, आप वैसे ही नजर डाल लें। जराबा, ये जरबुन के अंदर सारे हुरूफ मौजूद हैं। कातला, ये मुकातला के अंदर सारे हुरूफ मौजूद हैं। हदा, ये हिदायत के अंदर सारे हुरूफ मौजूद हैं। यकीनी तौर पर, बदीही तौर पर, गौर और फिक्र नहीं करना पड़ता, किसी किस्म का शक और शुबा इसमें नहीं। लेकिन इसका बरअक्स नहीं है कि मस्तर के सारे हुरूफ फेल में हो, ऐसा नहीं है। वहम जुज हफ्त वजन मसादिर सुलासी, यानी कतलुन फिस्कुन शुक्रुन तलबुन खनिकुन सिगरुन हुदन वदर तफाउल व तफाउल व तफाउल दरहमा औजान हुरूफ़े मस्दर। रा, रा है आपकी किताबों में, यह रा किताबत की गलती है, इसको यहां नहीं होना चाहिए। दरहमा औजान हुरूफ़े मस्दर अस हुरूफ़े फेले माजी जायदस्त। उसी बात की तफसील बयान कर रहे हैं। अभी क्या बात बयान की? कि आप लफ्जों में गौर कर लें, फेल के और मस्दर के, फेल के लफ्ज में गौर करें तो आप देखेंगे फेल के जितने हुरूफ हैं वो मस्दर में आपको मिलेंगे, और मस्दर के जितने हुरूफ हैं वो आपको फेल के अंदर नहीं मिलेंगे। सिर्फ 10 मस्दर हैं, 10 किस्म के मस्दर हैं जिनके सारे हुरूफ आपको फेल में मिलेंगे। तवज्जो है, सिर्फ 10 किस्म के मस्दर हैं जिनके सारे हुरूफ आपको माजी में मिलेंगे। और बाकी 10 के अलावा जितने भी मसादिर हैं उनके सारे हरूफ माजी में नहीं मिलेंगे, जबकि माजी दुनिया की कोई भी उठाकर देख लो उसके सारे हरूफ आपको मस्दर में हमेशा मिलेंगे। तो माजी जितनी भी हो सब के हरूफ मस्दर में मिलेंगे, लेकिन मस्दर सिर्फ 10 हैं जिनके हरूफ किस में मिलेंगे, माजी में मिलेंगे और नहीं है। बात समझ में आ गई। कुछ सुलासी मुजर्रद से हैं, 7 सुलासी मुजर्रद से हैं और 3 सुलासी मजीद फी से हैं, उनको अब जिक्र कर रहे हैं। भाई कहते हैं हम जुज 7 वजन मसादिर सुलासी, हम क्या तर्जमा होता है भी, लेकिन ये शुरू में आ रहा है तो इसका तर्जमा कर लें इसी तरह, या इसका तर्जमा कर लें नीज। नीज उर्दू में पढ़ते हैं या नहीं, वो जहीन भी है, नीज उसने मेहनत भी की। बात समझ में आए, तो नीज आता। अच्छा तो कहते हैं हम जुज 7 वजन मसादिर सुलासी, कहते हैं नीज नीज, और जुज का क्या माना अलावा, और नीज मसादिर सुलासी के 7 वजन के अलावा, इबारत पे नजर है
जी।
हम जुज 7 वजन मसादिर सुलासी, नीज मसादिर सुलासी के 7 औजान के अलावा, वो कौन से 7 औजान है, वो आगे जिक्र कर रहे हैं, यानी कत्लुन कत्ल करना, फिस्कुन नाफरमानी करना, शुक्रुन शुक्र करना, तलबुन तलब करना, खानिकुन गला दबाना गला घोंटना, सिगरुन छोटा होना, हुदन हिदायत देना रहनुमाई करना। ये वाले 7 वजन सुलासी के, वदर तफाउल व तफाउल व तफाउल, और किसमें तफाउल तफाउल और तफाउल, जो ये सुलासी मजीद फी के जो मसादिर हैं, इनके अलावा दरहमा औजान तमाम औजान में हुरूफ मस्दर अज हुरूफ फेल माजी जायद अस्त, मस्दर के हुरूफ फेल माजी के हुरूफ से जायद हैं। तो ये सुलासी मुजरद के ये 7 वजन हैं भाई। बात समझ में आ रही है, 7 वजन है, फालुन फिअलुन फुअलुन फालुन फाइलुन फिअलुन और फुअलुन, ये 7 वजन जो हैं, ये सिर्फ ये 7 वजन मुराद हैं भाई। बात समझ में आ गई। सुलासी के ये इधर देखो, सुलासी मुजर्रद के ये वाले 7 मसादिर और सुलासी मजीद फी के ये वाले 3 मसादिर, ये तफाउल तफाउल और तफाउल, इसके अलावा जितने औजान के हैं मस्दर के, आप सब में देख लें मस्दर के जो हरूफ हैं वो माजी के हरूफ से जायद हैं। जब जायद हैं तो वो मादा बनने की सलाहियत नहीं रखते, क्योंकि वो सारे के सारे माजी में मौजूद नहीं है। बात समझ में आ गई। आप फिर तर्जमा जरा बामुहावरा देख लो। कहते हैं हम जुज 7 वजन मसादिर सुलासी, यानी कत्लुन फिस्कुन शुक्रुन तलबुन खानिकुन सिगरुन हुदन वदर तफाउल व तफाउल व तफाउल, दरहमा औजान हरूफ मस्दर अस हरूफ फिल माजी जायद अस्त, नीज मसादिर सुलासी के 7 औजान और तफाउल तफाउल और तफाउल के तमाम औजान में, तमाम तर्जमे पे नजर है, दरहमा औजान उन तमाम औजान में, इन 7 मसादिर और इन 3 मसादिर के अलावा तमाम औजान में हरूफ मस्दर, मस्दर के जो हरूफ हैं अस हरूफ फेल माजी जायद अस्त, वो फेल माजी के हरूफ से जायद हैं। वह जाहिर अस्त, और ये बात जाहिर है कि लियाकत मादियत हमो मीदारन के दर जुमला फुरू याफ्ता शवद न आंके याफ्ता न शवद, और ये बात जाहिर है कि लियाकत मादियत क्या तर्जमा करेंगे, मादा होने की सलाहियत, और ये बात जाहिर है कि लियाकत मादियत हमो मीदारद के मादा होने की सलाहियत वही रखता है कि दर जुमला फुरू याफ्ता शवद, जो तमाम फुरू के अंदर पाया जाए, न आंके याफ्ता न शवद, न के वो जो पाया न जाए। मादा होने की सलाहियत वही रखता है जो तमाम फुरू में पाया जाए, न के वो जो के न पाया जाए, और वो फेल है, फेल के हरूफ तमाम मसादिर में मौजूद हैं, लेकिन मसादिर के तमाम हरूफ हर फेल के अंदर मौजूद नहीं है। वहां मजीद आले अहक व अलियकस ब इसालत मादियत न मजीद, भाई एक है मजीद एक है मजीद आले। जैसे देखो फेल माजी क्या है अकरामा और इसका मस्दर क्या है इकराम, तो अकरामा के कितने हुरूफ चार और इकराम के कितने हुरूफ पांच हुरूफ भाई, तो जायद हुरूफ किस में है इकराम में, तो इकराम हुआ मजीद यानी इसमें ज्यादती की गई है, इसमें हुरूफ को बढ़ाया गया है और किसके हुरूफ को बढ़ाया अकरामा के, तो अकरामा हुआ मजीद अलै मजीदुन अलैही इस पर अलैही इस पर इजाफा किया गया। अकरामा क्या हुआ मजीद अलै और इकराम क्या हुआ मजीद, बात समझ में आ रही, जिस पर इजाफा किया जाए वो क्या है मजीद अलै और जिस में इजाफा किया वो क्या है मजीद, तवज्जो नहीं है तवज्जो नहीं है, जिस पर इजाफा किया गया वो क्या है जिस पर इजाफा किया गया मजीद अलैही और जिस में इजाफा किया वो क्या है मजीद है, और मादा और असल होने की सलाहियत मजीद में होती है या मजीद अलै में, मजीद अलै में किस में कि वो मादा है। देखो अकरमा सारा का सारा ले लिया इकराम के अंदर ले आए और साथ एक हर्फ और भी बढ़ा दिया तो ये क्या बन गया मजीद बन गया, तो मादा तो हर हर एक में मौजूद होना चाहिए और फिर जायद हुरूफ भी लाओगे ताकि सूरत जरा बदलती जाए भाई, बात समझ में आ रही है, तो किस सलाहियत किस में मादा होने की मजीद में या मजीद अलै में, मजीद अलै में मादा होने की सलाहियत है कि वो हर लफ्ज में पाया जाए और साथ फिर अगर इजाफा भी हो जाए माना के बदलने के लिए, तो ये बात बयान कर रहे हैं। कहते हैं वहम मजीद अलै अहक व अलियकस्त, अहक का माना है इसमें तफजील है अहक ज्यादा हकदार, इसमें तफजील है अहक क्या माना, और अलयक ये भी इसमें तफजील है ज्यादा लायक ज्यादा लायक। कहते हैं वहां मजीद अले अहक व अलयक इसालत व मादियत न मजीद, और नीज मजीद अले जो है मजीद अले कौन है फेल, फेल के लफ्ज क्या है उन्हीं पर मस्तर में इजाफा हो जाता है, तो कहते हैं नीज मजीद अलै जो है अहक व अलियकस्त वो ज्यादा हकदार और ज्यादा लायक है ब इसालत और मादियत मादा और असल होने का, किस चीज का मजीद अलै जो होता है वो ज्यादा हकदार है मादा होने का और असल होने का न मजीद न के मजीद। वबूदन हमा हरूफ फिल माजी दर जुमला मसादिर अयानस्त, वबूदन और होना हमा हरूफ फिल माजी के तमाम हरूफ का दर जुमला मसादिर तमाम मसादिर में अयानस्त, ये बात जाहिर है ये बात जाहिर है कि फिल माजी के तमाम हरूफ तमाम मसादिर में मौजूद हैं। कहते हैं बूदन हमा हरूफ फिल माजी दर जुमला मसादिर अयान अस्त, फिल माजी के तमाम हरूफ का तमाम मसादिर के अंदर होना अयान अस्त ये बात जाहिर है। दर इख्शीशान व इदहीमाम ये अब एक एतराज का जवाब दे रहे हैं, एक एतराज का जवाब दे रहे हैं, एतराज ये कि आपने अभी हमें बताया कि फेले माजी को असल करार देना चाहिए और मस्तर को उसकी फरा करार देना चाहिए क्योंकि फेले माजी के जो हरूफ हैं वो तमाम मसादिर के अंदर मौजूद हैं लेकिन तमाम मसादिर के हरूफ वो फेले माजी के अंदर मौजूद नहीं हैं, तो इस पर इश्काल होता है कि आइए हम आपको मिसाल दिखाते हैं कि फेले माजी के तमाम हरूफ मस्तर में मौजूद नहीं, जैसे माजी है इख्शाओशाना और मस्तर है इख्शीशान और इख्शाओशाना के अंदर वव आ रहा है और इख्शीशान में वो वव मौजूद नहीं, इसी तरह इदहाम इदहामा में आप देखें, इदहामा में हा और मीम के दरमियान एक अलिफ मौजूद है, इदहामा, लेकिन इद ही माम, यहां पर हा और मीम के दरमियान अलिफ मौजूद नहीं है बल्कि या मौजूद है। एतराज समझ में आ रहा है कि आपने क्या कहा था कि फिल माजी के तमाम हरूफ मस्दर में हमेशा मौजूद होते हैं, हम आपको मिसाल दिखाते हैं कि फिल माजी के तमाम हरूफ मस्दर में मौजूद नहीं। एक शौशना, यहां जो दो शीन है उनके दरमियान वो आ रहा है, लेकिन इसका मस्दर एक शीशान, यहां पर दो शीन के दरमियान वो वो नहीं है बल्कि क्या है, या है। तो तमाम हरूफ माजी के वो तो मस्दर के अंदर मौजूद नहीं। इसी इदहामा फिले माजी है, इसमें हा और मीम के दरमियान क्या मौजूद है, अलिफ मौजूद है, लेकिन इसका मस्दर इद ही माम, यहां पर हा और मीम के दरमियान वो अलिफ नहीं है बल्कि क्या मौजूद है, या। तो आपकी बात तो दुरुस्त न रही, आपने तो क्या कहा था कि माजी के तमाम हरूफ किस में मौजूद होते हैं, मस्दर में। तो जवाब देंगे कि नहीं भाई, माजी के तमाम हरूफ मस्दर में मौजूद है, हा एक शौशना में वो था, एक शीशान में वो ही वो या से बदल गया क्योंकि पहले शीन पर कसरा आ गया। तो एक शीशान के अंदर भी वो मौजूद था लेकिन वहां वो से माकबल यानी पहले शीन के नीचे कसरा आ गया, और आप जाब्ता पढ़ चुके हैं कि वो से माकबल कसरा आ जाए तो उसको किससे बदलते हैं, या से। तो लिहाजा एक शीशान में भी वो या से बदल गया। इसी तरह आपने क्या कहा, इदहामा के अंदर हा और मीम के दरमियान अलिफ मौजूद है, हम कहते हैं वो अलिफ मस्तर में भी मौजूद है लेकिन दरअसल वो बदल गया क्योंकि माकबल कसरा आया। इदहामा मस्तर क्या है, इद ही माम, देखो यहां हा और मीम के दरमियान जो या है ये दरअसल अलिफ थी लेकिन हा पर जेर आ गई तो माकबल कसरा की वजह से वो अलिफ किससे बदल गया, या से बदल गया। बात समझ में आ गई, देखिए भाई किताब पर कहते हैं दर इख्शी शान व इद ही माम के व मौजूद, दर इख्शाओ शाना व अलिफ मौजूद, दर इदहाम मा याफ्ता नमे शवत। कहते हैं इख्शी शान और इद ही माम में कि वो जो वो मौजूद था दर इख्शाओशाना इख्शाओशाना में, वह अलिफ मौजूद दर इदहामा, और वो जो अलिफ मौजूद था इदहामा के अंदर वो इख्शीशान और इदहीमाम में याफ्ता नमे शवद, वो पाया नहीं जाता। वजह इन के उसकी वजह ये है कि वो अलिफ दर मस्दर बसबब कसरा माकबल हसब इक्तेजाए कायदा या गर्दीदा, इसकी वजह यह है कि वाव और अलिफ मस्दर में बसबब कसरा माकबल माकबल के कसरा की वजह से हस्ब इक्तेजाए कायदा कायदे के तकाजे के मुताबिक या गर्दीदा या हो गए, वो वाव और अलिफ क्या हो गए, या हो गए यानी या से बदल गए। क्योंकि आपने जाब्ता पढ़ा है मुअत्तल के जाब्तों में कि वाव या अलिफ से पहले अगर कसरा आ जाए तो उनको किससे बदलते हैं, या से बदलते हैं। पस बिल असल वाव व अलिफ दर मस्तर मौजूद अस्त, पस असल में वाव और अलिफ मस्तर में मौजूद हैं। वो अगर मस्तर मादा बूदे माजी इख्शायशना व इद है ममा आम दे वहम चुनी हमा अफाल व अस्माए मुश्तका। भाई बतला रहे हैं, तकरीर ये चल रही है कि फेले माजी जो है वो मादा बनने की सलाहियत रखता है, वो असल होने की सलाहियत रखता है, लेकिन मस्दर जो है वो मादा और असल होने की सलाहियत नहीं रखता। क्योंकि माजी के तमाम हुरूफ तो आपको मस्दर में हमेशा मिलेंगे लेकिन मस्दर के तमाम हुरूफ आपको फेले माजी में हमेशा नहीं मिलेंगे। जैसे अभी मिसाल हमने जिक्र कर दी इख्शीशान और इधीमाम, इसके सारे हरूफ तो इख्शाओशाना और इधामा में मौजूद नहीं लेकिन इख्शाओशाना और इधामा के तमाम हरूफ किस में मौजूद हैं, इख्शीशान और इधीमा में मौजूद हैं। अलबत्ता वो वाव और अलिफ किससे बदल गए हैं, माकबल कसरा की वजह से या से बदल गए हैं। अब आगे आ रहा है अगर मस्तर मादा बूदे, यहां से उल्टा बसरा वालों पर एतराज कर रहे हैं कि ए बसरा वालों आप तो क्या कहते हैं मस्तर असल है और माजी क्या है उसकी फरा। अगर मस्तर असल होता तो मस्तर के तमाम हुरूफ माजी के अंदर मौजूद होने चाहिए थे। और एक शीशान मस्तर के अंदर दो शीन जो है उनके दरमियान क्या है या, तो ये या तो माजी में भी होनी चाहिए थी। लिहाजा अगर मस्तर को देखें और मस्तर से माजी बनाए तो वो तो इख्शाशाना होनी चाहिए, इख्शाशाना तो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मस्तर इदहीमाम को अगर देखें तो उसमें हा और मीम के दरमियान या है, तो लिहाजा इससे माजी जो है इदहय ममा होनी चाहिए, इदहामा नहीं होनी चाहिए। भाई एतराज समझ में आ रहा है कि अगर आपकी बात मान लें और मस्तर को असल करार दे दें तो मस्तर के सारे हरूफ माजी में मौजूद होने चाहिए, तो इस सूरत में तो माजी इख्शाशाना और इधायमामा होनी चाहिए, लेकिन ये माजी तो इख्शाशाना और इधायमामा नहीं है। और कहते हैं इसी तरह है तमाम अफाल और तमाम अस्माए मुश्तका के अंदर भी। आप इन दोनों बाबों के तमाम अफाल देख लें, माजी मुजारे अमर वगैरह देख लें, या आप इनके अस्माए मुश्तका देख लें, इनका इसमें फाइल देख लें, इसमें मफूल देख लें, इसमें जर्फ वगैरह देख लें, आप देखेंगे कि माजी के तमाम हरूफ तो सबके अंदर मौजूद हैं लेकिन मस्तर के हरूफ सबके अंदर मौजूद नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर आप ये कहें कि मस्तर असल है और माजी क्या है उसकी फरा है, तो फिर इश्काल क्या हुआ कि इख्शाशाना के अंदर तो या है और इख्शाशाना के अंदर तो या नहीं। अगर आप ये जवाब देने की कोशिश करें कि या थी लेकिन वो या किससे बदल गई, वाव से बदल गई, इदहीमाम में या है लेकिन इदहामा में वो या किससे बदल गई, अलिफ से बदल गए, कहते हैं नहीं ये भी आप नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि यहां पर ऐसा कोई जाब्ता मौजूद नहीं है कि इख्शाशाना की या को वाव से बदला जाए। कि आप कहें असल में तो था इख्शाशाना फिर या किससे बदल गई, वाव, कहते हैं ऐसा कोई जाब्ता ही नहीं है कि जिसके मुताबिक आप कहें या को बदलकर वाव कर दिया गया। कोई जाब्ता है तो हमें बताएं। इसी तरह इद है मामा, आप कहें इद हामा असल में तो क्या था, इधाय मामा बना मस्तर से ही है, असल में या थी फिर वो या किससे बदल गई, अलिफ से बदल गई, कहते हैं ऐसा कोई जाब्ता ही नहीं है कि जिसके मुताबिक ये या किससे बदल जाए, अलिफ से बदल जाए। मालूम हुआ बात वही है जो हमने की, हमने तो बता दिया एक शौशाना के वो मस्तर में जाकर किससे बदला, या से, और जाब्ते के मुताबिक बदला या वैसे ही बदला, जाब्ते के मुताबिक के वाव से माकबल कसरा आया तो वो किससे बदल गया, या से। इसी तरह हमने कहा इदहामा असल है और इदहीमाम उसकी फरा है, और इदहीमाम में भी वो अलिफ था लेकिन माकबल कसरा की वजह से किससे बदल गया, या से बदल गया है भाई। तो हमने तो जो भी बात की जाब्ते के मुताबिक बात की, और अगर आपकी बात मान ले कि इख्शीशान और इदहीमाम असल है तो फिर तो माजी के अंदर भी ये या होनी चाहिए थी, और आप ये भी नहीं कह सकते कि ये या वाव से बदल गई है, ये असल में या थी फिर किससे बदल गई, वाव से बदल गई। आप इसलिए नहीं कह सकते कि कोई ऐसा जाब्ता ही नहीं है कि जिससे ये या बदलकर वाव बन जाए या अलिफ बन जाए इन दो लफ्जों के अंदर भाई, इख्शाशाना और इदहायमामा में। बात समझ में आ गई? देखिए अब तर्जमा कहते हैं, अगर मस्दर मादा बूदे, और अगर मस्दर मादा होता माजी इख्शाशाना व इदहाय ममा आमदे, तो माजी जो है वो इख्शाशाना और इदहाय ममा आते, वह हम चुनी हमा अफाल अस्माए मुश्तका, और इसी तरह तमाम अफाल और अस्माए मुश्तका भी उनमें भी इसी तरह होता। जेरा के कायदा व वजह बराए इब्दाल या बवो दर इख्शाशाना व ब अलिफ दर इधामा याफ्ता नमे शबद, इसलिए क्योंकि कोई कायदा व वजह और कोई वजह बराए इब्दाल या बवो किस चीज के लिए, या को वो से बदलने के लिए, दर इख्शाशाना किस में, इख्शाशाना में, व ब अलिफ दर इधामा और या को अलिफ से बदलने के लिए, दर इधामा किस में, इधामा में, याफ्ता नमे शब्द पाया नहीं जाता, ऐसा कोई जाब्ता पाया नहीं जाता कि इख्शाशाना में असल में कहें इख्शाशाना था और फिर या को किस से बदला गया, वो से, या इधामा असल में क्या था, इधहयमामा था और फिर या को किस से बदला गया, अलिफ से, ऐसा कोई जाब्ता भी मौजूद नहीं है। लिहाजा मालूम हुआ ए बसरा वालों आपकी बात दुरुस्त नहीं, कूफा वालों की बात बड़ी मजबूत है। बात समझ में आ गई? اچھا ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی، یہ آخر میں سے ذرا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں. زیرہ کے قاعدہ و وجہ برائے ابدال یا بواو در اخشاوشانہ و با الف در ادہام ما یافتہ نمے شود، اس لیے کیونکہ کوئی قاعدہ اور کوئی وجہ یا کو واو سے بدلنے کے لیے اخشاوشانہ میں اور الف سے بدلنے کے لیے ادہام ما میں پایا نہیں جاتا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا. و در مصدر تفعیل کے حرف مقرر ماضی یافتہ نمے شود. اچھا یہ ایک اور سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ فعل کو اصل قرار دو اور مصدر کو اس کی فرع قرار دو اشتقاق کے اندر، اس لیے کیونکہ فعل کے تمام حروف تو مصدر میں پائے جاتے ہیں لیکن مصدر کے تمام حروف تو فعل میں پائے نہیں جاتے. کہتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ فعل کے تمام حروف مصدر میں موجود نہیں، جیسے کرما کرما، اور اس کا مصدر کیا ہے؟ تکریم. توجہ ہے، باب تفعیل کا کوئی بھی فعل لے آئیں تو، یا جیسے حمدا اس سے کیا بنے گا؟ تحمید. تو دیکھو کرما کے اندر را مشدد ہے اور جو حرف مشدد ہوتا ہے وہ در اصل دو حروف ہوتے ہیں، تو کویا کرما میں ایک کاف ہے، دو را ہیں اور ایک میم ہے، لیکن تکریم اس میں تو صرف ایک را ہے، دوسری را موجود نہیں. معلوم ہوا فعل کے تمام حروف مصدر کے اندر موجود نہیں. تو جواب دیں گے کہ یہ جو باب تفعیل کا مصدر ہے اس کے اندر بھی در اصل وہ حرف مقرر موجود تھا جو ماضی کے اندر موجود ہے. کرما میں کتنی را ہیں؟ دو. تو تکریم کے اندر بھی دو را موجود تھیں، اور تکریمن اصل میں کیا تھا؟ تکریرمن. کیا تھا؟ تکریرمن تھا، اور پھر دوسری را کو یا سے بدل دیا گیا تو کیا بن گیا؟ تکریمن. اسی طرح تحمیدن مصدر جو ہے اصل میں کیا تھا؟ تحمیمدن. تحمیمدن، اور پھر دوسرے میم کو کس سے بدل دیا گیا؟ یا سے. اور کہتے ہیں تو ہم نے دوسرے حرف کو کیا کیا؟ یا سے بدل دیا. اور مضاف کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ دو ہم جنس حرفوں میں سے دوسرے کو حرف علت سے بدل دیا جاتا ہے ثقل کو ختم کرنے کے لیے. کس کو ختم کرنے کے لیے؟ تو یہ کرما یہ مضاعف تو نہیں، کیونکہ ایک را اصلی ہے اور ایک را زائد ہے، لیکن مضاعف جیسی صورت تو ہے. مضاعف میں کیا ہوتا ہے؟ دو حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں، تو کرما میں بھی کیا ہے؟ دو را ہیں ایک جنس والی ہیں، تو مضاعف تو نہیں لیکن مضاعف جیسی صورت ہے. اور مضاعف میں عرب کیا کرتے ہیں؟ جب دو حرف ایک جنس کے ہوں تو اکثر وہ ایسا کرتے ہیں، دوسرے حرف کو حرف علت سے بدل دیتے ہیں ثقل کو دور کرنے کے لیے. جیسے قرآن میں آتا ہے دساہا، اور وہاں پر آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں تو مفسرین حضرات آپ کو بتائیں گے کہ یہ دسا اصل میں تھا دسا سا. دسا اصل میں کیا تھا؟ دسا سا. تو یہ جو آخر میں سین تھا اس کو پھر الف سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ دسا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے. اور کبھی کبھار پہلے کو بھی بدل دیا کرتے ہیں بھائی مضاف کے اندر، کبھی کبھار دو جو مقرر حرف آ رہے ہیں ان میں سے پہلے کو بھی ماقبل کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں. جیسے دینارن دینارن، یہ اصل میں کیا تھا؟ دینارن. دو نون تھے پھر ایک نون کو یا سے بدلا تو کیا بن گیا؟ دینار. بھائی کیسے پتا چلا یہاں دو نون تھے؟ کہتے ہیں اس کی جمع تکسیر دیکھ لو، دینار کی جمع تکسیر ہے دنانیر. دیکھو دنانیر میں کتنے نون ہیں؟ دو، اور دینار میں ایک. معلوم ہوا یہاں ایک اور نون بھی تھا جو کس سے بدل چکا ہے؟ یا سے. بھائی تو مضاف میں ایسا ہوتا رہتا ہے، تو لہذا باب تفعیل کے اندر جو یا آتی ہے دراصل یہ وہی حرف مقرر ہے جس کو یا سے بدل دیا گیا، جیسا کس میں کرتے ہیں؟ مضاف میں کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. कहते हैं वह दर मस्दर तफईल, उनके हर्फ मुकर्रर माजी याफ्ता नमे शवत। कहते हैं मस्दर तफईल में जिसमें माजी का हर्फ मुकर्रर पाया नहीं जाता। मुहक्किकान गुफ्तांद, मुहक्किकीन ने कहा है भाई, यानी उलमाए मुहक्किकीन ने कहा है कि असल याए तफईल आ हर्फ मुकर्रर बूदा, कि असले याए तफईल आ कि इसकी याए तफईल की जो असल है हर्फ मुकर्रर बूदा, वो हर्फ मुकर्रर थी। इस या की असल क्या थी? वही हर्फ मुकर्रर थी। मसलन तहमीद उन दर असल तहमीम दुन बूद, मिसाल के तौर पर तहमीद उन असल में तहमीम दुन था। मी में दोम रा बया बदल कर दंद, दूसरे मीम को या से बदल दिया। अक्सर दर मुजाफ हर्फ दोम रा बराए दफ़े सिकल बहर्फ इल्लत बदल में कुनंद, अक्सर मुजाफ में दूसरे हर्फ को बराए दफ़े सिकल सिकल को दूर करने के लिए बहर्फ इल्लत बदल में कुनंद हर्फ इल्लत से बदल देते हैं। चुनाचे दर दस साहा जैसे के दस साहा में कि असलश दस ससाहा बूद, कि इसकी असल जो है वो दस ससाहा थी। सीन आखिर रा बा अलिफ बदल कर दंद, आखिर के सीन को अलिफ से बदल दिया। बात समझ में आ गई? सवाल ई के गुफ्ती बतब सीरतुन व तस्मियतुन। जी एतराजात चलते जा रहे हैं। इन्होंने क्या कहा था कि माजी के तमाम हरूफ तो मस्तर में पाए जाते हैं लेकिन मस्तर के तमाम हरूफ माजी में नहीं पाए जाते, लिहाजा माजी में असल बनने की सलाहियत है, मस्तर में असल बनने की सलाहियत नहीं। तो फिर एक इश्काल ये हुआ कि शौशाना का वो तो इशीशान में नहीं, इधामा का अलिफ तो इधीमाम में नहीं, तो उसका जवाब दे दिया। फिर दूसरा एतराज किया कि कर्रामा की दूसरी रा तो तकरीम में मौजूद नहीं, हम्मदा की दूसरी मीम तो तहमीद में मौजूद नहीं, तो उसका भी जवाब दे दिया कि नहीं मौजूद है लेकिन किससे बदल गई है? या से बदल गई है। अब एक और एतराज करने लगे। एतराज ये देखिए भाई, सवाल इनके गुफ्ती ये जो तूने कहा बतब सिरतुन व तस्मियतुन व सलामुन व कलामुन मसादिर तफ़ईल, ये तफ़ईल के मसादिर हैं, बाब तफ़ईल के मसादिर। आपने पढ़ा है कि नाकिस लफीफ और महमूजुल्लाम से बाब तफ़ईल का मस्तर क्या आता है? तफ़ईलतुन। और इसी तरह सलामुन और कलामुन ये भी क्या है? बाब तफ़ईल के मसादिर हैं भाई। तो कहते हैं ई की गुफ्ती ये जो आपने कहा बतबसिरतुन व तस्मियतुन व सलामुन व कलामुन मसादिर तफ़ईल, तो ये तबसिरा तस्मिया सलाम कलाम ये सारे क्या हैं? बाबे तफ़ईल के मसादिर। और आगे आ रहा है वकीतालुन व कीतालुन मसादिर मुफाला, ये किताल और कीताल ये बाबे मुफाला के मसादिर हैं। कातला युकातिलु मुकातलतन व कीतालन, तो मुकातला जैसे मस्तर है बाब मुफाला का, इसी तरह किताल भी आता है, फिआल भी आता है और फी हाल भी आता है। तो कहते हैं आपकी आपने क्या कहा, माजी के तमाम हरूफ मस्तर में मौजूद होते हैं लेकिन तफ़ईलतुन सलामुन कलामुन जो बाब तफ़ईल के मसादिर हैं और किताल और कीतालुन जो बाबे मुफाला के मसादिर है, यहां आकर आपकी बात टूट जाती है। यहां माजी के तमाम हरूफ मस्तर में मौजूद नहीं, मस्तर में मौजूद नहीं। जैसे सम्मा, इसका मस्तर क्या? तस्मिया। सम्मा, सम्मा में दो मीम है और तस्मिया में दो मीम नहीं है। इसी तरह सल्लमा, सल्लमा इसका मस्तर क्या है? बताया इन्होंने तस्लीम भी है और सलाम भी है, अभी बताया सलाम भी है, ये भी बाबे तफ़ईल का मस्तर है। तो सल्लमा में तो दो लाम है, सलाम में तो दो लाम नहीं। इसी तरह कल्लमा, ये भी बाबे तफ़ईल है, इसका मस्तर क्या? तकलीम भी और कलाम भी। तो कलाम देखो इसमें भी क्या है, कल्लमा में दो लाम और कलाम में एक लाम, तो देखो माजी के तमाम हरूफ मस्तर में मौजूद नहीं। इसी तरह बाबे मुफाला में जरा आ जाओ, कातला, कातला काफ और ता के दरमियान क्या है? अलिफ। लेकिन किताल ये भी बाबे मुफाला का मस्तर है, यहां तो काफ और ता के दरमियान कोई अलिफ नहीं, किताल यहां पर भी काफ और ता के दरमियान अलिफ मौजूद नहीं है। बात समझ में आ गई, ये इश्काल है, आगे इसका जवाब देंगे। फिर देखिए इश्काल, सवाल ई के गुफ्ती बतबसिरतों व तस्मियतों व सलामुन व कलामुन मसादिर तफ़ईल व किताल व किताल मसादिर मुफाला मुंतकिज में शवद। कहते हैं ये जो आपने कहा ये तबसिरा तस्मिया सलाम और कलाम जो बाबे तफ़ईल के मसादिर हैं और किताल और किताल जो बाबे मुफाला के मसादिर हैं, आपकी ये बात जो है इनके जरिए मुंतकिज में शवद टूट जाती है। आपकी ये बात टू, आपने क्या बात की थी कि फेल के तमाम हरूफ किस में पाए जाते हैं मस्तर में, लेकिन इन के जरिए आपकी ये बात टूट जाती है, यानी इन में तो सारे फेल वाले हरूफ मौजूद नहीं है। तो नक्स, नक्स का माना है तोड़ना तोड़ना, और एतराज को भी क्या कहते हैं नक्स कहते हैं। तो आपकी बात टूट जाती है यानी आपकी इस पर बात पर एतराज होता है। चिदरी मसादिर जुमला हरूफ माजी मौजूद नेस्त, क्योंकि इन मसादिर में माजी के तमाम हरूफ मौजूद नहीं है। भाई तर्जमा समझ में आ रहा है, आगे जवाब देंगे। जवाब कहते हैं गुफ्तगु दर असल मसादिर, कहते हैं हमारी बहस जो है वो असल मसादिर में है कि कुल्लियतन दर बाब बाशद, जो कुल्ली तौर पर बाब में हो, किस में हो। कहते हैं ये जो मसादिर है ना ये कलीलुल वजूद है, ये मसादिर क्या है कलीलुल वजूद, थोड़े बहुत चंद एक मसादिर हैं जो अलग आए हैं, बाकी आम मसादिर जो है उनके बारे में हमारी बात चल रही है। आम मसादिर में आप जब भी देखेंगे माजी के तमाम हरूफ जरूर मिलेंगे। आपने क्या कहा तबसिरा तस्मिया सलाम और कलाम को जिक्र किया, भाई ये तो कम इस्तेमाल होने वाले मस्तर हैं बाबे तफ़ईल के। बाबे तफ़ईल का असल मस्तर तो तफ़ईल वजन पर आता है, और उसमें हमने अभी बता दिया कि ये जो या है वो हर्फ मुकर्रर से बदल कर आई है। बात समझ में आ गई, तो ये कलीलुल वजूद मसादिर का एतबार नहीं करेंगे बल्कि कसीरुल वजूद मसादिर जो है उनका एतबार करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। इसी तरह आपने क्या कहा बाबे मुफाला के अंदर किताल और कीताल, इनके अंदर माजी के तमाम हरूफ नहीं। कहते हैं भाई बाबे मुफाला का असल जो आम मस्तरा है वो मुफाला आता है, ये किताल और कीताल ये तो कलीलुल वजूद मसादिर हैं, इनका एतबार नहीं है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं गुफ्तगु दर असल मसादिर अस्त के कुल्लियतन दर बाब बाशद, कहते हैं गुफ्तगु बहस जो है असल मसादिर में है कि जो कुल्ली तौर पर बाब में हो। मसादिर कलीलतुल वजूद एतबार रा न शायद, वो मसादिर जो कलीलुल वजूद हैं एतबार रा न शायद, वो एतबार के लायक नहीं। शायदन का माना होता है लायक होना, एतबार रा न शायद, वो एतबार के लायक नहीं, उनका एतबार नहीं करेंगे। वह सलामुन व कलामुन, बाकी सलामुन और कलामुन को भी आपने एतराज में जिक्र कर दिया। कहते हैं सलामुन और कलामुन के बारे में तो उलमा ने लिखा है ये मस्दर हैं ही नहीं, ये इसमें मस्दर हैं। ये क्या है इसमें मस्तर है, हमारी बहस मसादिर के बारे में चल रही है, इसमें मस्तर के बारे में तो बहस ही नहीं है। इनको लेकर तो आप एतराज कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो मसादिर है ही नहीं, ये तो क्या है इसमें मसादिर। इसमें मसादिर किसे कहते हैं, याद रखो इसमें मस्तर वो है जो मस्तर तो नहीं लेकिन माना मस्तर वाला अदा कर रहा है, उसको क्या कहते हैं इसमें मस्तर कहते हैं। भाई कहते हैं वसलामुन व कलामुन रा इसमें मस्दर गुफ्तान, और सलामुन और कलामुन को इसमें मस्दर जो है वो कहा है, यानी सरफियों ने इसको इसमें मस्दर कहा है। वह असले वजन तफ़ईलतुन, अच्छा फिर आपने क्या कहा तफ़ईलतुन वजन लेकर एतराज किया तबसिरतुन तस्मियतुन। बात समझ में आ रही है, एक तो जवाब दे दिया कि हमारी बात उन मसादिर में है जो कुल्ली तौर पर अबवाब में आते हैं, जो कलीलुल वजूद मसादिर हैं उनका एतबार नहीं है, और बाकी मजीद भी जवाब दे रहे हैं कि भाई सलामुन कलामुन ये तो इनको उलमा ने क्या कहा है मस्तर नहीं है बल्कि इसमें मस्तर, लिहाजा इनको लेकर भी आप एतराज नहीं कर सकते। और बाकी आपने तस्मियतुन यानी तफ़ईलतुन वजन लेकर एतराज किया, तो कहते हैं तस्मियतुन जो तफ़ईलतुन वजन है इसके बारे में भी सरफियों ने लिखा है कि तफ़ईलतुन असल में तफ़ईलुन था, वही तफ़ईल, बाब तफ़ईल का जो मस्दर, ये असल में क्या था? तफ़ईल था, फिर या को हजफ कर दिया और उसके अवज आखिर में ता ले आए, गोलता, तो क्या बन गया? तफ़ईलतुन। तो ये देखो सारे हरूफ मौजूद हैं या नहीं, उसी तफ़ईल ही से तो ये बना है भाई। और तफ़ईल के अंदर ये या किससे बदल कर आई थी? उसी हरफे मुकर्रर से भाई। कहते हैं वह असले वजन तफ़ईलतुन तफ़ईलुन बर आवुर्दा अन, और तफ़ईलतुन वजन की असल जो है तफ़ईलुन बर आवुर्दा अन, वो तफ़ईलुन निकाली है, यानी उलमाए सर्फ ने तफ़ईलतुन की असल तफ़ईलुन निकाली है। वह गुफ्ता और फरमाया है कि तस्मियतुन मसलन दर असल तस्मीवुन बूत, के तस्मियतुन मिसाल के तौर पर असल में तस्मीवुन था, बरवजने तफ़ईलुन तस्मीवुन था, या रा हजफ करदा, या को हजफ करके ता दर आखिर ईवज दादन, ता जो है वो आखिर में बतौर ईवज के दे दी। अच्छा, या को गिरा दो और आखिर में ता जरा ले आओ, क्या बन गया? तस्मीवुन, या को गिरा दो और आखिर में गोलता ले आओ, तस्मीवातुन वाव है, तस्मीवातुन, फिर वाव मा कबल कसरा की वजह से, या वो चौथी जगह पर आया, इसलिए वो किससे बदल गया? या से बदल गया, तो क्या बन गया? तस्मियतुन। तो कहते हैं वह वो बसबब राबियत या शुदा, और वो चौथी जगह पर होने की वजह से या हो गया, तो वो चौथी जगह पर आया किससे बदल गया? या से। वह दरकी तालुन। अच्छा, और एतराज में आपने क्या जिक्र किया था कि की ताल जो है उसमें कातला के सारे हरूफ मौजूद नहीं? कहते हैं नहीं भाई, मौजूद हैं। की ताल ये जो या है दरअसल अलिफ थी, क्या थी? लेकिन काफ के नीचे चूंकि कसरा था और आपने जाब्ता पढ़ा कि अलिफ से माकबल कसरा आ जाए तो उसको या से बदलते हैं, तो ये अलिफ या से बदल गया, तो क्या बन गया? की ताल। तवज्जो है, कातला माजी। एतराज क्या था कि कीताल मस्तर में कातला के सारे हरूफ मौजूद नहीं, कातला में अलिफ है, कीताल में अलिफ नहीं, काफ के बाद भाई। तो बतलाया कि अलिफ कीताल में भी था लेकिन काफ के कसरा की वजह से वो अलिफ किससे बदल गया? या से, तो क्या बन गया? कीताल। तो कीताल में माजी के सारे हरूफ मौजूद हैं, और इसी कीताल में तख़फीफ की और या को गिरा दिया तो क्या बन गया? कीताल। तो गोया हासिल है कलाम ये कि माजी के हुरूफ हमेशा हर मस्तर में मौजूद होते हैं, हां इलाल वगैरह की वजह से बदल जाएं या गिर जाएं तो अलग बात है, लेकिन मौजूद जरूर होते हैं। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वदर की तालुन अलिफ के दर माजी बूदा, कीताल में वो अलिफ जो के माजी में था, बसबब कसरा माकबल याशुदा, वो माकबल के कसरा की वजह से या हो गया। वह कीताल मुखफ्फ आनस, और कीताल इसी का मुखफ्फ है, यानी उसी कीताल में क्या कर दी? तख़फीफ कर दी भाई, उसको जुबान पर हल्का करने के लिए या को गिरा दिया। पस दर जुमला मसादिर हामा हरूफ फेल माजी वलो तकदीरन मौजूदस्त, हासिल कलाम क्या हुआ कि पस दर जुमला मसादिर तमाम मसादिर में हामा हरूफ फेल माजी, फेल माजी के तमाम हरूफ जो हैं वलो तकदीरन अगरचे तकदीरन ही हो मौजूदस्त, मौजूद हैं। तमाम मसादिर में माजी के तमाम हरूफ मौजूद हैं अगरचे तकदीरन ही हो। बात समझ में आ रही? इख्शौशन का वो इख्शीशान में मौजूद है अगरचे बदल गया, कर्रमा की रा तकरीम में मौजूद है अगरचे बदल गई, और इसी तरह सम्मा का मीम तस्मिया में मौजूद है, क्योंकि तस्मिया असल में क्या था? तस्मीवुन, मीम किससे बदल गया है? या से बदला, और फिर इसी तस्मीवुन से क्या बन गया? तस्मियतुन बन गया। तो अगरचे इस वक्त तो मौजूद नहीं लेकिन असल में था, यूं को इस वक्त भी तकदीरन मौजूद है, सिर्फ एलाल की वजह से सीगे की सूरत बदल गई है। इसी तरह कातला का अलिफ भी की ताल में मौजूद है, और किताल में भी मौजूद है क्योंकि वहां से भी तख़फीफ के लिए हज़फ किया है। भाई बात अच्छी तरह समझ में आ गई। ये माना है पस दर जुमला मसादिर हमा हरूफ फेल माजी वलाउ तकदीरन मौजूद अस्त, पस तमाम मसादिर में फेल माजी के तमाम हरूफ मौजूद हैं अगरचे तकदीरन हो। ये पहली दलील मुकम्मल हुई भाई। अब आगे आ गई दूसरी दलील दो में आन के। पहली दलील क्या थी कि इश्तिकाक चूंकि लफ्जी मामला है लिहाजा इसका फैसला भी लफ्जों से किया जाएगा और देखेंगे किसके लफ्ज में मादा और असल बनने की सलाहियत है। तो हमने देखा माजी के अंदर मादा बनने की सलाहियत है इसलिए क्योंकि माजी के जितने हरूफ हैं वो हमेशा मस्तर के अंदर होते हैं लेकिन मस्तर के सारे हरूफ हमेशा माजी में नहीं होते। अब अगली दलील आई देखिए भाई दुवम आन के फेल बे मस्तर याफ्ता में शवद। अच्छा दूसरी दलील सुन लो भाई समझ लो। दलील ये कि लैसा और आसा कहते हैं अफ़ाल मौजूद हैं लेकिन इनके मसादिर अरबी जुबान में नहीं मिलते। भाई लैसा किस में से है अफ़ाल नाक़िसा में से और आसा जो है अफ़ाल मुकारबा में से है। लैसा का भी मस्तर हमने अरबों से नहीं सुना और आसा का भी मस्तर हमने अरबों से तवज्जो है। लैसा भी फेल और आसा भी फेल लेकिन इनके मस्तर मौजूद नहीं, इनके मस्तर मौजूद नहीं। और ए बसरा वालों अगर हम आपकी बात मान लें कि मस्दर असल है और फेल उसकी फरा तो यहां फरा तो मौजूद है और असल मौजूद नहीं। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे बगैर जड़ों के ही शाखें निकल आए भाई। और बगैर जड़ों के शाखें हो सकती हैं या बगैर जड़ों के तना हो सकता है? नहीं भाई। बात समझ में आ गई जड़ें होंगी तो तना बनेगा और फिर शाखें निकलेंगी भाई। तो लिहाजा दूसरी दलील चल रही है। दूसरी दलील क्या कि लैसा और आसा ऐसे फेल हमें मिलते हैं जिनके फेल तो मौजूद हैं लेकिन मस्तर मौजूद नहीं। तो अगर फेल को असल करार दें और मस्तर को इसकी फरा करार दें फिर तो बात ठीक बन जाती है कि ये फेल है असल मौजूद है फरा मौजूद नहीं कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप मस्दर को असल करार देते हैं और फेल को फरा करार देते हैं जैसे बसरा वाले करते हैं तो फिर तो यहां पर तो फरा बगैर असल के पाई गई और फरा तो कभी भी बगैर असल के नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई। कहते हैं दुवम आ के दूसरी दलील ये कि फेल बे मस्दर याफ्ता में शवद, फेल जो है बगैर मस्दर के पाया जाता है। मसलन लैसा व आसा, जैसे लैसा और आसा। पस अगर मस्तर असल बाशत, पस अगर मस्तर असल हो वजूद फरा बे वजूद असल लाजिम आयत तो फरा का वजूद बगैर असल के वजूद के लाजिम आएगा भाई और ये दुरुस्त नहीं। मस्तर बेफेल नया आमदा, जबकि मस्तर बगैर फेल के नहीं आया। वह बाजे मसादिर रहा। अच्छा आगे अब एतराज जिक्र कर रहे हैं, एक एतराज जो तलबा के जहन में आ सकता है। आपने हमें क्या कहा कि फेल को असल करार देना चाहिए मस्तर को असल करार ना दो क्योंकि बाज अफाल ऐसे हमें मिलते हैं जिनका मस्तर नहीं मिलता। तो अगर मस्तर को असल करार दे दें फिर तो खराबी लाजिम आएगी कि फरा बगैर असल के पाई गई, हालांकि फरा तो बगैर असल के नहीं पाई जाती। तो फेल को असल मान लो तो फेल असल है वो बगैर फरा के भी आ जाए तो कोई हरज नहीं, जैसे लैसा और आसा। जबकि मस्तर तो बगैर फेल के कलाम अरब में नहीं आया। इस पर बाजों ने कहा हम आपको बाज मसादिर दिखाते हैं कि वो बगैर फेल के आए हैं, बगैर फेल के हैं, जैसे मतनुन और तकसीमुन। मतन हर सख्त चीज को कहते हैं और तकसीम का माना तकसीम करना। तो मतनुन मीम ता और नून, मतनुन और तकसीमुन ये दो मसादिर ऐसे हैं कि जिनका फेल नहीं आया। इसमें फाइल वगैरह तो आए हैं लेकिन फेल नहीं आया। तो जवाब देंगे कि हमें आपकी ये बात तस्लीम नहीं है। मतनुन का आपने कहा फेल नहीं आया और तकसीम का फेल नहीं आया, हमने लुगत उठाई तो लुगत के अंदर इनका फेल मौजूद है। मालूम हुआ जो جبکہ بعضوں نے یہ لکھا کہ ان کا فعل نہیں آیا، ان کی یہ بات صحیح نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لغت میں متنون اور تقسیمون کا فعل موجود ہے، لغت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب ان کا فعل استعمال کرتے ہیں، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ ان کا فعل نہیں آیا درست نہیں، آپ کا اعتراض درست نہیں. تو کہتے ہیں وہ بعض مصادر را کے عقیمہ گفتاند، بعض مصادر کے جن کو عقیمہ کہا ہے. عقیمہ، عقیمہ کہتے ہیں بھائی بانجھ عورت. عقیمہ کسے کہتے ہیں؟ بانجھ عورت. وہ عورت کے کسی بیماری مرض وغیرہ کی وجہ سے اب وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہ رہے تو اس کو کہتے ہیں عقیمہ، کہ یہ بانجھ ہے، بچوں کو جنم نہیں دے سکتی، یعنی اس میں صلاحیت ہی پھر نہیں رہتی بچوں کو جنم دینے کی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیمہ. تو یہ مصدر کہتے ہیں بعض مصادر کو عقیمہ کہا گیا ہے، یعنی یہ مصادر بانجھ ہیں. جیسے عورت، وہ عورت جس کی اولاد نہ ہو سکے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بانجھ. اسی طرح یہ مصادر بھی عقیمہ ہیں کہ ان سے آگے کوئی فعل وغیرہ نہیں آیا، جیسے متنون اور تقسیم. کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ بات آپ کی مسلم نہیں، تسلیم شدہ نہیں ہے، لغت میں ان کے افعال موجود ہیں تو ان کو عقیمہ کہنا صحیح نہیں. تو کہتے ہیں وہ بعض مصادر را کے عقیمہ گفتان، کہتے ہیں بعض مصادر کے جن کو عقیمہ کہا ہے صرفیوں نے، مثل متنون و تقسیم، جیسے متنون اور تقسیم کے ازیں ہر دو، کہ ان دونوں سے جز فاعل نہ آمدہ، اس میں فاعل کے علاوہ اور صیغے نہیں آئے. پس بودن این ہا، این چنی مسلم نیست، پس ان کا ہونا، پس بودن این ہا، پس ان کا ہونا، این چنی اس طرح ہونا کہ ان سے فعل نہیں آیا، مسلم نیست، یہ مسلم نہیں، یہ تسلیم شدہ نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے. چنانچہ از قاموس واضح میں شواد، چنانچہ لغت کی کتاب قاموس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. لغت کی کتاب قاموس میں ان کے فعل مذکور ہیں باقاعدہ، معلوم ہوا ان کو عقیمہ کہنا صحیح نہیں. یہ دوسری دلیل بھائی، دوسری دلیل کا حاصل کیا ہوا؟ کہ فعل کو اصل کہو، مصدر کو اصل نہ کہو. اگر آپ مصدر کو اصل کہیں گے تو لیسا اور عصا میں کیا جواب دیں گے؟ ان کا تو مصدر ہی نہیں ہے، تو بغیر مصدر کے فعل کیسے پایا گیا، بغیر اصل کے فرع کیسے پائی گئی؟ اس کا حاصل یہ ہوا کہ آپ نے کہا مصدر کو اصل قرار دو، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل کو اصل قرار دے دو، فعل کو اصل. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اصل کا وجود تو بغیر فرع کے ہو سکتا ہے، لیکن فرع کا وجود بغیر اصل کے نہیں ہو سکتا. چنانچہ ایسے افعال تو آپ کو ملیں گے جن کا مصدر موجود نہیں، لیکن ایسے مصدر نہیں ملیں گے آپ کو جن کا فعل موجود نہ ہو. بھائی معلوم ہوا فعل اصل ہے، وہ بغیر مصدر کے بھی پایا جا رہا ہے کیونکہ وہ اصل ہے، اگر وہ فرع ہوتا تو بغیر مصدر کے کبھی بھی نہ پایا جاتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے آگے تیسری دلیل، سیوم ان کے تیسری دلیل یہ ہے کہ بصریاں بودن معنی مصدری را مادہ برائے معانی افعال و مشتقات دلیل بر اشتقاق لفظ فعل از لفظ مصدر قرار داداند، این معنی بعد تعمل در حقیقت اشتقاق لفظی محض باطل میں گردد. اچھا یہ تیسری دلیل آ گئی بھائی، یاد رکھیے یہ تیسری دلیل بھی ہے کوفہ والوں کی اور یہ جواب بھی ہے بصرہ والوں کو. بصرہ والوں نے کیا دلیل ذکر کی تھی؟ کہ مصدر اصل ہے. کیوں؟ کیونکہ مصدر کا معنی باقی سب کے معانی کے لیے اصل ہے. تو اب اس کا جواب دینے لگے ہیں، کہتے ہیں بھائی دیکھیے بات ہماری چل رہی ہے اشتقاق کے بارے میں، اور اشتقاق کے بارے میں آپ ذرا غور کریں کہ اشتقاق کہتے کسے ہیں، اس کا تعلق لفظ سے زیادہ ہے یا معنی سے زیادہ ہے. تو ہم نے غور کیا تو دیکھا اشتقاق تو ایک لفظی چیز ہے، ایک لفظ سے دوسرا لفظ بن رہا ہے بھائی، معنی بھی بدل رہا ہے لیکن اصل کیا ہے؟ لفظ لفظ سے بن رہا ہے بھائی. تو اشتقاق ایک لفظی چیز ہے، اس کا تعلق لفظ سے ہے، اور آپ مصدر کو اصل قرار دینے کے لیے دلیل میں کس کو پیش کر رہے ہیں؟ معنی کو. اور یہ بات کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، لفظی چیز کے لیے، لفظی معاملے کے لیے लफ्ज को दलील बनाना चाहिए ना कि माना को। भाई बात समझ में आ गई। देखिए भाई, तो ये तीसरी दलील भी है और बसरा वालों को जवाब भी है। देखिए सेवम इनके तीसरी दलील ये है कि बसरिया बूदन मान मसदरी रा मादा बराए मानी अफाल मुश्तकात। बसरा वाले जो हैं बूदन मान मस्तरी रा मादा, मान मस्तरी का मादा होना, तवज्जो है, बूदन मान मस्तरी रा मादा, मान मस्तरी का मादा होना बराए मानी अफाल मुश्तकात, अफाल मुश्तकात के मानी के लिए दलील बर इश्तिकाक लफ्ज़ फेल अज लफ्ज़ मस्दर, लफ्ज़ मस्दर से लफ्ज़ फेल के इश्तिकाक पर दलील करार दादा अंद उन्होंने करार दी है। उन्होंने दलील बर इश्तिकाक लफ्ज़ फेल अज लफ्ज़ मस्दर, तर्जमा आखिर से होगा, लफ्ज़ मस्दर से लफ्ज़ फेल के इश्तिकाक पर दलील करार दादा अंद करार दी है। बात समझ में आ गई। फिर अब्बा मुहावरा पूरा तर्जमा सुनो। बसरिया बूदन मान मस्तरीरा मादा बराए मानी अफाल मुश्तकात दलील बर इश्तिकाक लफ्ज़ फेल अज लफ्ज़ मस्दर करार दादा अंद। तर्जमा होगा मानी अफाल मुश्तकात से। इसको हम शुरू में ले आएंगे। बात समझ में आ रही है। मानी अफाल मुश्तकात को कहां ले आएंगे? शुरू में कहते हैं कि बसरा वालों ने मानी अफाल मुश्तकात के लिए मान मस्तरी के मादा होने को, मानी अफाल मुश्तकात के लिए मान मस्तरी के मादा होने को दलील बनाया है। तवज्जो है, दलील करार दादा अंद, दलील करार दिया है, दलील बनाया है किस चीज को? अफाल और मुश्तकात के मानी के लिए। फिर इधर समझो, समझ लो इसको। एक है अफाल और मुश्तकात का माना, एक है मस्तर का माना। इन्होंने क्या कहा? मस्तर का माना वो असल है और मादा है किसके लिए? तमाम अफालो मुश्तकात के माना के लिए। और इस बात को दलील बनाया इस बात पर कि लफ्ज़ फेल लफ्ज़ मस्तर से मुश्तक है। इख्तिलाफ किस में था? इश्तिकाक में है। बसरा वाले क्या कहते हैं कि फेल मस्तर से मुश्तक है और इसके लिए दलील किस चीज को बनाया? माने मस्तर को, कि माने मस्तर वो तमाम अफाल और तमाम मुश्तकात के मानी के लिए असल है। वो कहते हैं कि चूंकि माने मस्तर, मस्तर का जो माना है वो तमाम मुश्तकात के मानी के लिए असल है और मादा है। कौन मादा है? मस्तर का माना। किसके माना के लिए? तमाम मुश्तकात, तमाम मुश्तकात के मानी के लिए मस्तर का माना असल है और मादा है। जब मस्तर का माना असल है तो मस्तर का लफ्ज भी, उसको भी क्या मान लो? असल मान। जब मस्तर के माना को असल मान रहे हो तो मस्तर के लफ्ज को भी क्या मान लो? असल मान लो। बात समझ में आ गई। यही बात आप बयान कर रहे हैं। देखिए तर्जमा, बसरिया बूदन मान मस्तरी रा मादा बराए मानी अफाल मुश्तकात दलील बर इश्तिकाक लफ्ज़ फेल अज लफ्ज़ मस्तर करार दादा अंद। पहले तर्जमा यहां से देख लो। दलील, दलील करार दादा अंद, दलील करार दी है। बसरा वालों ने लफ्जों पे नजर रखना किताब पे। बसरियान, बसरा वालों ने दलील, आगे लफ्ज आ रहा है दलील, दलील करार दादा अंद, दलील करार दी है। बसरा वालों ने दलील करार दी है किस चीज पर? बर इश्तिकाक लफ्ज़ फेल अज लफ्ज़ मस्तर, कि लफ्ज़ मस्तर से लफ्ज़ फेल का इश्तिकाक है, कि लफ्ज़ मस्तर से लफ्ज़ फेल का इश्तिकाक है। बसरा वालों ने इस पर दलील करार दिया है किस चीज को? वो दरमियान में जिक्र कर दिया, बूदन माने मस्तरीरा मादा बराय मानी अफाल मुश्तकात, अफाल मुश्तकात के मानी के लिए मस्दर के माना के मादा होने को, अफाल मुश्तकात के मानी के लिए मस्दर के माना के मादा होने को, मुश्तकात और अफाल के जो मानी हैं उनके लिए मस्दर का माना असल है और मादा है। तवज्जो है, मुश्तकात और अफाल जो हैं उनके मानी के लिए मस्दर का माना असल है और मादा है। जुबान से दोहराओ, मुश्तकात और अफाल के मानी के लिए मस्दर के माना के मादा और असल होना, मस्दर के माना का माना मादा और असल है किसके लिए? मुश्तकात और अफाल के मानी के लिए। मस्दर का माना असल और मादा है किसके लिए? मुश्तकात और अफाल के मानी के लिए। तो मुश्तकात और अफाल के मानी के लिए मस्दर के माना के असल और मादा होने को उन बसरा वालों ने दलील बनाया है किस चीज पर? के फेल मुश्तक है किससे? मस्दर से। बात समझ में आ गई? फिर सुन लो, बसरा वालों ने तमाम मुश्तकात और अफाल के मानी के लिए मस्दर के माना के मादा और असल होने को दलील बनाया है किस चीज पर? के फेल मुश्तक है किससे? मस्दर से। अच्छा, दावा उनका क्या है कि फेल मुश्तक है किससे? मस्दर। और दलील किस चीज को बनाया? माना को दलील बनाया कि मस्दर का माना चूंकि मादा है और असल है तमाम बाकी मुश्तकात के मानी के लिए, तो जब मानी के लिए असल और मादा है तो लफ्ज के लिए भी क्या होगा? मादा होगा, इसी से फेल बना है। बात समझ में आ गई? अब देख लीजिए तर्जमा भाई, सिवम इनके तीसरी दलील यह है कि बसरियां बूदन मान मस्तरी राम मादा बराय मानी अफाल मुश्तकात के बसरा वालों ने मान मस्तरी के मादा होना बराय अफानी अफाल मुश्तकात, अफाल मुश्तकात के मानी के लिए दलील बर इश्तिकाक लफ्ज फेल अज लफ्ज मस्तर करार दादान, इसको उन्होंने मस्तर से लफ्ज फेल के इश्तिकाक पर दलील बनाया है। तर्जमा समझ में आ गया? आगे कहते हैं, ई माना बाद तअम्मुल दर हकीकत इश्तिकाक लफ्जी महज़ बातिल में गर्दद। ये वाला माना, ये वाले वजह जो है माना, ये माना यानी ये इल्लत और ये वजह, ये दलील, माना से यहां मुराद है इल्लत और वजह या दलील। ये इल्लत जो है किस चीज को इल्लत बनाया? बसरा वालों ने क्या कहा? किसको असल बनाओ इश्तिकाक में? बसरा वालों ने क्या कहा? मस्दर को असल बनाओ और फेल को उसकी फरा बनाओ। और दलील क्या जिक्र की? क्योंकि मस्दर का जो माना है वो तमाम मुश्तकात के लिए मादा है और असल है, तो ये जो इल्लत उन्होंने जिक्र की कि इस वजह से मस्दर को इश्तिकाक में भी असल करार दो, जब हमने इस वजह के अंदर गौर किया तो पता चला ये तो बिल्कुल गलत वजह जिक्र की, इसकी यहां तो बात ही नहीं बनती। इश्तिकाक तो एक लफ्जी चीज है और आप दलील में माना को जिक्र कर रहे हैं, लफ्जी चीज के लिए लफ्जी चीज को दलील में जिक्र करना चाहिए ना कि मानवी चीज को। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं ई माना, ये जो वजह है, ये जो सबब है, बाद तअम्मुल गौर फिक्र के बाद, दर हकीकत इश्तिकाक लफ्जी, इश्तिकाक लफ्जी की हकीकत में, ई माना ये जो वजह है, ये जो इल्लत है, बाद तअम्मुल दर हकीकत इश्तिकाक लफ्जी, इश्तिकाक लफ्जी की हकीकत में गौर करने के बाद, ये माना जो है महज़ बातिल में गर्दद, महज़ बातिल हो जाता है, महज़े बातिल यानी गलत साबित हो जाता है। कहते हकीकत इश्तिकाक लफ्जी इनस्त, कि इश्तिकाक लफ्जी की हकीकत यह है। भाई देखो, यहां तक बात समझ में आ गई? अब बसरा वालों की बात की थोड़ी और तफसील, चूंकि आगे जिक्र आ रहा है उसका, तो इसलिए यहीं पर समझ लें। बसरा वाले कहते हैं कि मस्तर का माना तमाम मुश्तकात के मानी के लिए असल है और मादा है। ये आपने भी मान लिया कि मस्तर का माना असल और मुश्तकात का माना उसकी फरा। और माना माना तो बगैर लफ्ज के नहीं हो सकता, माना तो तभी दला माना तो तभी आएगा जब पहले क्या आए, लफ्ज ही उस माना पर दलालत करेगा ना, लफ्ज होगा तो माना पर दलालत होगी। तो जब आपने माना को असल मान लिया तो लफ्ज को भी क्या कर लो, असल मान लो भाई। कहते हैं ये इसी तरह है जैसे सोना चांदी और फिर उनसे जेवर बनाए जाएं, सोना चांदी और फिर उसे तो पहले सोना चांदी मौजूद होते हैं फिर उससे आगे जेवर और बर्तन वगैरह बना लेते हैं। तो मस्दर की मिसाल है सोने और चांदी की तरह, और इससे जो आगे फेल वगैरह और मुश्तकात वगैरह बने उनकी मिसाल है जेवर और बर्तन की तरह। तवज्जो है, जेवर और बर्तन की तरह। जब जेवर और बर्तन आपने सोने से बना लिए तो उनमें वो सोना मौजूद है कि नहीं, वो मौजूद है। इसी तरह मस्तर से आप जितने भी मुश्तकात बना लें उनके अंदर भी वो मस्तर वाला माना मौजूद है भाई। दलील समझ में आ रही, तो उसका आगे जवाब देंगे, जवाब देंगे कि भाई इश्तिकाक के अंदर ऐसा नहीं होता, इश्तिकाक के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक लफ्ज पहले हो कि मुश्तक मिनहू पहले हो और मुश्तकात बाद में हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि पहले मस्तर था फिर उसे एक सीगा बना फिर दूसरा बना फिर तीसरा बना फिर चौथा बना, नहीं नहीं मुश्तकात में ऐसा नहीं होता। इश्तिकाक में दो लफ्ज इकट्ठे मौजूद हैं, जरब भी मौजूद है जराबा भी मौजूद है और दोनों में मुनासिबत भी है। जरब का माना है मारना और जराबा का माना है जमाने माजी में मारा। देखा माना में भी क्या है, मुनासिबत मौजूद है। जब लफ्जों में भी मुनासिबत हो माना में भी मुनासिबत हो तो फिर हम कह देते हैं कि इनके दरमियान इश्तिकाक हुआ है, एक मुश्तक मिनहू है और दूसरा क्या है, मुश्तक है। बात समझ में आ रही, ऐसा नहीं होता कि पहले मस्तर होता है और फिर उसे एक एक लफ्ज बनता चला जाता है, नहीं नहीं लफ्ज इकट्ठे ही मौजूद थे एक ही जमाने के अंदर थे। हां हमने एक को मुश्तक मिनहू करार दे दिया और एक को क्या करार दे दिया, मुश्तक। क्यों करार दिया, क्योंकि क्योंकि उनके लफ्जों में भी मुनासिबत थी और माना में भी मुनासिबत थी। जरबुन और जराबा, यजरिबु जारिबुन मजरूबुन, ये सारे लफ्जों में देखो क्या है, इन सब लफ्जों में मुनासिबत मौजूद है। तो लिहाजा इनमें से एक को हम असल करार दे देंगे और बाकियों को उससे मुश्तक करार दे देंगे। ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ जरबुन था या पहले सिर्फ जराबा था बाद में उसे यजरिबू बना बाद में उससे जारिबुन बना बाद में उससे मजरूबुन बना, नहीं ये सारे एक ही जमाने में मौजूद थे। हमने सिर्फ क्या कर लिया, एक को असल करार दे दिया और बाकियों को फरा करार दे दिए। यह माना नहीं जैसे पहले जड़ें होती हैं फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता शाखें निकलती हैं, यहां ऐसा मामला नहीं है भाई। जैसे सोना और चांदी, भाई सोना और चांदी तो पहले मौजूद होते हैं, बर्तन और जेवर तो बाद में बनते हैं, तो उनका तो जमाना ही अलग अलग है। सोने चांदी पहले मौजूद, उसका जमाना पहले है और बर्तनों का जमाना बाद में है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है कि एक लफ्ज पहले था और बाकी लफ्ज बाद में आए, उनका जमाना अलग अलग है, नहीं नहीं ये सारे एक ही जमाने में मौजूद हैं। हां हमने इनके दरमियान इश्तिकाक मान लिया, उसका एतबार कर लिया, वरना दर हकीकत यहां ऐसा नहीं है कि एक लफ्ज पहले था फिर उससे बाकी लफ्ज बनते चले गए। लफ्ज सारे इकट्ठे मौजूद थे लेकिन हमने जब इनमें मुनासिबत देखी, लफ्जों में भी मुनासिबत देखी माना में भी मुनासिबत देखी, तो एक को क्या करार दे दिया, मुश्तक मिनहू, और बाकियों को क्या करार दे दिया, मुश्तक करार दे दिया। यहां जमाने का फर्क नहीं है। बात समझ में आ गई। ये इसी तरह है जैसे देखो, एक है चाबी का घूमना एक है ताले का खुलना। हम क्या कहते हैं, चाबी पहले घूमती है और ताला बाद में खुलता है, इसी तरह है। हां लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का जमाना एक ही है। जो जो चाबी घूमती जा रही है ताला खुलता जा रहा है, जो ही चाबी पूरी घूमेगी ताला भी पूरा खुल जाएगा साथ ही। तो दोनों का जमाना एक ही है। यह जैसे सूरज का निकलना और दिन का होना, हम क्या कहते हैं सूरज पहले निकलेगा दिन फिर होगा, नहीं नहीं, जो जो सूरज निकलता जा रहा है उसी जमाने के अंदर दिन भी होता जा रहा है भाई। देखा जमाना एक ही है भाई। यह जैसे कहते हैं ज़रबत ज़ैदन तादीबन, मैंने जैद की पिटाई की किस लिए, अदब सिखाने के लिए, कि जर्ब लगेगी तो अदब सीख जाएगा। मालूम हुआ जर्ब पहले है अदब बाद में सीखेगा, नहीं नहीं, जमाना एक ही है। जो जो जर्ब लगती जा रही है वो अदब सीखता जा रहा है भाई। यहां भी कोई जमाने का फर्क नहीं। तो यहां इश्तिकाक में भी इसी तरह है, ये नहीं कि मुश्तक मिनहू पहले था और मुश्तक बाद में बना, जमाना अलग था, नहीं नहीं, थे एक ही जमाने के अंदर, लेकिन हमने क्या कर लिया, एक को मुश्तक मिनहू करार दे दिया और दूसरे को मुश्तक करार दे दिया, यानी दोनों का जमाना एक ही है, जमाने अलग अलग नहीं है। अब एक को मुश्तक मिनहू करार देना है और एक को मुश्तक करार देना है तो उसके लिए फिर दलाइल चाहिए भाई। बात समझ में आ गई। अब देखिए कहते हैं वह हकीकत इश्तिकाक लफ्जी ईनस, और इश्तिकाक लफ्जी की हकीकत यह है कि दर दो लफ्ज तनासुब बाशद लफ्जों व मानन, के दो लफ्जों के अंदर मुनासिबत हो लफ्जों के एतबार से भी, व मानन और माना के एतबार से भी, वह हर जा अज लफ्ज एतबार बिनाए लफ्ज दीगर सहल बाशद। इधर देखो दो लफ्जों में मुनासिबत हो, अब एक को असल करार देना है और एक को फर, तो आसानी जिस तरह हो, जिसको असल बनाने में आसानी हो उसको असल करार देंगे। और यहां पर आसानी किस में है, किसको असल करार दे दो, फेल को असल करार दे दो, क्योंकि फेल के सारे हरूफ क्या हैं, तमाम मसादिर में मौजूद हैं और मसादिर के तमाम हरूफ जो हैं तमाम अफाल में मौजूद नहीं। हासिल क्या हुआ कि इश्तिकाक में क्या होता है, ये सारे लफ्ज एक ही जमाने में मौजूद हैं, तो जब उनमें लफ्जों में भी मुनासिबत हो और माना में भी मुनासिबत हो तो फिर हम कहते हैं इनमें इश्तिकाक हुआ है। और किसको फिर असल करार देते हैं, जिसमें आसानी हो गई कि दूसरा इससे बन सकता है इस तरीके से आसानी से, जिसको मुश्तक मिनहू करार देने में क्या हो, आसानी हो। तो कहते हैं वह हर जा अज लफ्ज एतबार बिना ए लफ्ज दीगर सहल बाशद, और हर जगह कि जहां पर एक लफ्ज से एतबार बिना ए लफ्ज दीगर, बिना का माना है बनाना, बनाना बनायबनी बिना अन जी, और इसे इसमें मफूल क्या आता है, मबनी युन, जिसको बनाया गया हो। तो कहते हैं वह हर जा अज लफ्ज एतबार बिना ए लफ्ज दीगर सहल बाशद, और जहां पर भी किसी लफ्ज से एतबार बिना ए लफ्ज दीगर, दूसरे लफ्ज की बिना का एतबार, दूसरे लफ्ज के बनाने का एतबार, दूसरे लफ्ज के बनाने का एतबार सहल बाशद आसान हो, तो लफ्ज दो मरा मबनी व मुश्तक अज लफ्ज अव्वल करार देहंद, तो दूसरे लफ्ज को मबनी और मुश्तक, मुबनी बनाया गया, दूसरे लफ्ज को कि वो बनाया गया है वह मुश्तक और मुश्तक है, अज लफ्ज अव्वल करार देहंद, पहले लफ्ज करार दे देते हैं, लफ्ज दोम राम मबनी व मुश्तक अज लफ्ज अव्वल करार देहंद, दूसरे लफ्ज को पहले लफ्ज मबनी और मुश्तक करार दे देते हैं। माना समझ में आ गया। सूरत सौग अवानी व हुली अज़हब फिज़ा के मादा ज़हब, ये वही बात जिक्र कर रहे हैं जो मैंने जिक्र कर दी कि बसरा वाले दलील में क्या जिक्र करते थे कि जिस तरह सोने से जेवर और बर्तन बनाए जाते हैं, तो इसी तरह यहां पर भी मस्दर से ये अल्फाज बने हैं। कहते हैं नहीं भाई, सोने और चांदी से जो बर्तन बनते हैं उस पर आप कयास नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वहां सोना पहले मौजूद है और बर्तन बाद में बन रहे हैं, जेवर बाद में बन रहे हैं, तो दोनों का जमाना अलग अलग है। हालांकि यहां पर मुश्तक और मुश्तक मिनहू के वजूद का जमाना एक ही है, अलग अलग नहीं है। सौग, सौग का माना है ढालना, ढालना, जेवर बनाने वाला क्या करता है, सोने और चांदी को मुख्तलिफ सूरतों में ढालता है, मुख्तलिफ शक्लें उनकी बनाता है, इसको ढालना कहते हैं। तो सौख का माना ढालना। अवानी, अवानी जमा है आनियतुन की, और आनियतुन जमा है इना की, और इना ये बर्तन को कहते हैं। फिका वगैरह की किताबों में आपने पढ़ा होगा इना उन, किसे कहते हैं बर्तन, इसकी जमा है आनियतुन, और आनियतुन की जमा है अवानी, यानी ये जमउल जमा है, जमा की जमा है। हुलियुन, हुलियुन भाई ये जमा है हलयुन की, तवज्जो है, हुलियुन जमा है हलयुन की, और हलयुन कहते हैं जेवर को, जेवर को। जहब कहते हैं सोने को, फिज्जा कहते हैं चांदी को। अच्छा, तो कहते हैं सूरत सौगे अवानी व हुली अज़हब व फिज़ा, कहते हैं सोने और चांदी से जेवर और बर्तन के ढालने की सूरत। तर्जमा समझ में आ रहा है, आखिर से कर रहा हूं। सूरत सौगे अवानी व हुली अज़हब व फिज़ा, चांदी और सोने से जेवर और बर्तनों के ढालने की जो सूरत है कि मादा ज़हब व फिज़ा अलैदा अव्वलन मौजूदा, कि सोने और चांदी का जो मादा है वो अलैदा पहले से मौजूद है। वदरा तसर्रुफ करदा, और उसके अंदर तसर्रुफ करके तब्दीली करके अवानी व हुली में साजन बर्तन और जेवर बनाते हैं। इन जाने यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा इश्तिकाक के अंदर ऐसा नहीं है। इंजान यहां पर ऐसा नहीं है कि मुश्तक मिनहु अलैदा अव्वलन मौजूद बूत, कि मुश्तक मिनहु पहले से अलैदा मौजूद था। वह दरा तसरुफ करदा, और फिर उसमें तसरुफ करके मुश्तकरा साख्ता अंद, मुश्तक को उसे बनाया। यहां ऐसा नहीं है कि मुश्तक मिनहु पहले, दोबारा तर्जमे पे नजर रखें, इन जानेस यहां पर ऐसा नहीं है कि मुश्तक मिनहु पहले अलैदा से मौजूद था और फिर उसमें तसरुफ करके उसे मुश्तक बना लिया, ऐसा नहीं है, बल्कि यहां दोनों का जमाना एक है। कहते हैं तहक्कुक मुश्तक मिनहु व मुश्तक, तहक्कुक का माना पाया जाना, मौजूद होना। तहक्कुक मुश्तक मिनहु व मुश्तक, मुश्तक मिनहू और मुश्तक का होना का पाया जाना, बएतबार वज़ा व इस्तेमाल दर ज़माने वाहिद अस्त, मुश्तक मिनहू और मुश्तक का वजूद और इनका पाया जाना वज़ा और इस्तेमाल के एतबार से दर ज़माने वाहिद अस्त, एक ही जमाने में है। वज़ा और इस्तेमाल, वज़ा का क्या माना, वजा करना, मुकरर करना, एक लफ्ज को एक माना के लिए मुकरर करना, यानी मस्तर, मस्तरी माना के लिए जरबुन लफ्ज को मुकरर किया, फिले माजी के लिए जराबा के लफ्ज को मुकरर किया, और इसी तरह फिले मुजारे के लिए यजरिबू के लफ्ज को मुकरर किया, और इसमें फाइल के लिए जारिबुन के लफ्ज को मुकरर किया। यह है वजा, बात समझ में आ रही, ये जो हम बातें करते हैं ना यह है वजा। देखो मसलन मैं बोलता हूं गिलास, फौरन एक जहन में आपके एक बर्तन आ गया क्या, नहीं मालूम हो उस बर्तन, वो जो पानी पीने वाला बर्तन है उसके लिए हमने ये लफ्ज गिलास वजा किया, मुकर्रर किया है। और इसी तरह मैंने कहा चाय, फौरन आपके जहन में एक पी जाने वाली चीज आ गई, उस चीज के लिए हमने चाय का लफ्ज मुकर्रर किया है। इसी तरह दूध भाई, ये भी एक पी जाने वाली चीज है, उसके लिए हमने दूध का लफ्ज मुकर्रर किया है। इसी तरह किताब भाई, एक पढ़ी जाने वाली चीज, उसके लिए हमने क्या लफ्ज मुकर्रर किया है, किताब भाई। इसी तरह कमरा है, अच्छा जो भी आप जुबान के अंदर लफ्ज बोलते हैं इनमें से हर एक को हमने किसी माना के लिए मुकर्रर किया है। जैसे ही वो लफ्ज बोलते हैं आपको फौरन चीज समझ में आ जाती है। जैसे देखो मैं इस वक्त तकरीर कर रहा हूं, जो जो लफ्ज बोलता जा रहा हूं आप माना समझते जा रहे हैं, क्योंकि हमने इन मानी के लिए ये अल्फाज मुकर्रर किए हैं। हां अरब के सामने मैं ये उर्दू बोलूं उसको समझ में बात नहीं आएगी, क्योंकि उसने इन चीजों के लिए ये लफ्ज मुकर्रर नहीं किए, उन्होंने और लफ्ज मुकर्रर किए हुए हैं। अंग्रेजों ने अपने लफ्ज मुकर्रर किए हुए हैं। वही चाय है उसी को अरब वाले और नाम लेंगे, अंग्रेज और नाम लेंगे, उर्दू वाले और नाम लेंगे, क्योंकि हर एक की वजह अपनी अपनी है, अलग अलग है। बात समझ में आ गए। तो कहते हैं तहक्कुक मुश्तक मिन हुआ मुश्तक बैतबार वजह व इस्तेमाल दर जमाने वाहिद अस्त, मुश्तक मिन्हु, और मुश्तक का पाया जाना वजह और इस्तेमाल के एतबार से एक ही जमाने में है, यानी एक ही जमाने में इनकी वजह भी है और एक ही जमाने में इनका इस्तेमाल भी है, जमाना अलग अलग नहीं। पस दर दलील इश्तिकाक, आगे हासिल कलाम जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं हासिल कलाम ये कि बसरा वालों ने क्या किया, अपनी दलील में यह जिक्र किया था कि जिस तरह सोने चांदी से जेवर और बर्तन बनाए जाते हैं, इसी तरह इश्तिकाक में भी एक लफ्ज से बाकी अल्फाज बनाए जाते हैं। बात समझ में आ रही, कह रहे हैं आप इसको सोने चांदी से जेवर और बर्तन बनाने पर कियास नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, सोने चांदी और फिर जेवर और बर्तन का जमाना अलग अलग है, लेकिन यहां पर मुश्तक और मुश्तक मिन्हू की वजह और इस्तेमाल दोनों एतबार से जमाना एक ही है। पस दर दलील इश्तिकाक फेल अज मसदर, पस मसदर से फेल के इश्तिकाक की दलील में कसौगिल अवानी वल हुली मिन ज़हब वल फिज़्ज़त ज़िक्र नमूदन, जैसे के ढाला जाता है बर्तनों और जेवरात को सोने और चांदी से, जिक्र नमूदन इसको जिक्र करना, कियास माल फारिकस्त, ये क्या है, कियास माल फारिक, किस चीज की दलील में, कि फेल मस्दर से मुश्तक है, इस दलील में इस सोने चांदी और जेवर वगैरह को जिक्र करना ये कियास माल फारिक है। फारिक कहते हैं, फारिक का माने मुख्तलिफ, मुख्तलिफ, देखो एक जैसी चीजों को एक दूसरे पर कियास करते हैं, मुख्तलिफ चीजों को एक दूसरे पर कियास नहीं करते, एक जैसी चीजों को, मसलन शराब हराम है, शराब क्या है, हराम। अब आज के जमाने में एक नई चीज निकल आई, हीरोइन, ये तो उस जमाने में नहीं थी, अब इसका हुक्म क्या, तो उलमा ने इसको शराब पर कयास किया, जैसे शराब पीने से इंसान को नशा हो जाता है, मदहोश हो जाता है, इसी तरह हीरोइन से भी नशा हो जाता है, मदहोश हो जाता है, तो इसको किस पर कयास किया, शराब पर, और ये जब शराब जैसी है तो शराब वाला ही हुक्म इसको भी दे दिया, यानी जैसे शराब हराम है हीरोइन भी क्या है, हराम, तो एक जैसी चीजों को आपस में कयास किया जाता है, मुख्तलिफ चीजों पर कयास नहीं किया जाता, लिहाजा यहां पर आपका मुश्तक और मुश्तक मिन्हू को सोने चांदी और उनसे बने जेवरात पर कयास करना सही नहीं, कयास तो आप तब करते जब ये चीजें एक जैसी होती, लेकिन ये तो एक जैसी हैं ही नहीं, सोने और चांदी के अंदर जमाने अलग अलग हैं, वहां पर सोने चांदी और उसके जेवर का जमाना अलग अलग है, जबकि यहां पर मुश्तक और मुश्तक मिन्हू का जमाना अलग अलग नहीं है, जमाना एक ही है, तो लिहाजा दोनों एक जैसी हुई या अलग अलग हो गई चीजें, जे मुश्तक और मुश्तक मिन्हु इनको किस पर कियास किया था, सोने चांदी से जेवर और बर्तन बनाने पर, सोने चांदी से जेवर और बर्तन बनाना इनका जमाना तो अलग है और मुश्तक मिन्हु का जमाना तो एक ही है, तो दोनों एक जैसी चीजें हुई या अलग अलग हो गई, दोनों अलग अलग चीजें हैं, सोना चांदी और बर्तन ये अलग सूरत अलग चीज, ये उस जैसी नहीं है, दोनों एक जैसी नहीं, जब एक जैसी नहीं है तो एक को दूसरे पर कयास नहीं किया जा सकता, इश्तिकाक को आप उस तरह सोने से चीजें ढालने पर कयास नहीं कर सकते, क्योंकि कयास एक जैसी चीजों को आपस में किया जाता है, मुख्तलिफ चीजों का आपस में कयास नहीं किया जाता, तो ये भी कयास माल फारिक है, यानी मुख्तलिफ चीज पर कयास है, किस चीज पर कयास है, आप फिर तर्जमा देख लें, पस दर दलील इश्तिकाक फेल अज मसदर, पस मसदर से फेल के इश्तिकाक की दलील में, पस मसदर से तवज्जो नहीं है, मेरे ख्याल थक गए सारे हैं, पस दर दलील इश्तिकाक फेल अज मसदर, पस मसदर से फेल के इश्तिकाक की दलील में कसौगिल अवानी वल हुली मिन ज़हब वल फिज़्ज़त ज़िक्र नमूदन, कियास माल फारिकस्त, जैसे कि ढालना है बर्तनों का और जेवरात का सोने और चांदी से, जिक्र नमूदन इस बात को जिक्र करना, कयास माल फारिकस्त, ये क्या है, कयास माल फारिक है, ये कयास है एक मुख्तलिफ चीज पर, हालांकि कयास तो मुख्तलिफ चीज पर नहीं करते, कयास तो उसी जैसी चीज पर किया करते हैं। यहां पर इश्तिकाक में जमाना एक ही है और वहां पर सोने चांदी और उससे बने जेवरात और बर्तनों का जमाना अलग अलग है। बात समझ में आ गई अच्छी तरह? तो हासिल कलाम इनका यह हुआ कि बसरा वालों का इश्तिकाक को बर्तन और जेवर ढालने पर कयास करना, यह कयास दुरुस्त नहीं है भाई, यह कयास माल फारिक है, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं, एक के अंदर जमाना एक और एक के अंदर जमाना अलग अलग है। इश्तिकाक में जमाना एक ही होता है मुश्तक और मुश्तक मिन्हू का, और जबकि बर्तन और जेवर ढालने में असल यानी सोने चांदी के वजूद का जमाना और है और बर्तन और जेवरात के वजूद का जमाना और है भाई। और कियास तो मुनासिबत के वक्त किया जाता है और यहां तो दोनों में कोई मुनासिबत नहीं है। आगे देखिए भाई, फायदा गैर मुहक्कीकीन दर बयान ई इख्तिलाफ व तहरीर दलाइल तरफैन अजीब खब्त में कुनंद, कहते हैं गैर मुहक्कीकीन दर बयान ई इख्तिलाफ व तहरीर दलाइल तरफैन, कहते हैं गैर मुहक्कीकीन जो हैं यानी वो उलमा जो मुहक्कीकीन नहीं है जो बगैर तहकीक के बात करते हैं, वो जो हैं दर बयान ई इख्तिलाफ इस इख्तिलाफ को बयान करने में व तहरीर दलाइल तरफेन और दोनों जानिब के दलाइल तहरीर करने में अजीब खब्त में कुनंद, अजीब गलती करते हैं भाई। खब्त का एक माना है गलती भाई, इसी तरह खब्त कहते हैं बेसोचे समझे कुछ करना, बेसोचे समझे कोई काम करना, इसको भी क्या कहते हैं खब्तुन कहते हैं भाई। बात समझ में आ रही है? कहते हैं गैर मुहक्कीकीन उलमा जो हैं यानी जो बगैर तहकीक के बात करते हैं वो इस इख्तिलाफ को बयान करने में व तहरीर दलाइल तरफेन और दोनों तरफ के दलाइल लिखने में अजीब खब्त में कुनंद, अजीब गलती करते हैं। ये यूं तर्जमा कर लें, अजीब खब्त में कुनंद, अजीब नासमझी करते हैं, बेसोचे समझे कोई काम करना उसको क्या कहते हैं खब्त। तो तर्जमा यूं कर लें, अजीब खब्त में कुनंद, अजीब नासमझी करते हैं। तकरीर इख्तिलाफ दर मुतलक इसालत और फरइयत में कुनंद, अच्छा मैंने शुरू में बयान किया था कि जो कूफा और बसरा वालों का इख्तिलाफ है मुतलक इसालत और फरइयत में इख्तिलाफ है या इसालत और फरइयत इश्तिकाक के एतबार से इसमें इख्तिलाफ है, इश्तिकाक के एतबार से जो असल और फरा होना है उसमें इख्तिलाफ है, मुतलकन असल और फरा होने में इख्तिलाफ नहीं है भाई। यही बयान कर रहे हैं कि इधर देखिए बाज़ उलमा क्या फरमाते हैं, वो मुतलकन असल और फरा होने में इख्तिलाफ जिक्र करते हैं, वो बात को यूं जिक्र करते हैं जैसे कि कूफा और बसरा वालों का इख्तिलाफ इस बात में है कि मुतलकन मस्तर असल है या मुतलकन फेल असल है, हालांकि इसमें तो इख्तिलाफ नहीं है भाई, यही जिक्र कर रहे हैं। देखिए भाई कहते हैं अजीब गलती करते हैं कि तकरीर इख्तिलाफ दर मुतलक इसालत और फरइयत में कुनंद, इख्तिलाफ की तकरीर मुतलक असल और फरा होने में करते हैं, वो दर बयान इस्तेदलाल में गोयंद और इस्तेदलाल को बयान करते हुए वो कहते हैं कि बसरिया बाई जिहत मस्तर रा असल में गोयंद, कि बसरा वाले इस जिहत से मस्तर को असल कहते हैं कि फेल अज मस्तर मुश्तकस्त, कि फेल क्या है मस्तर से, वकूफिया बई जिहत फेल रहा असल में गोयंद, और कूफा वाले इस जिहत से फेल को असल कहते हैं कि मस्दर ताबे फेल असदर एलाल, कि मस्दर जो है वो फेल के ताबे है एलाल में। इधर देखिए भाई कहते हैं बाज उलमा अजीब गलती करते हैं, मैंने तो आपके सामने बयान कर दिया कि मुतलक इसालत और फरइयत में इख्तिलाफ नहीं, लेकिन बाज उलमा क्या करते हैं वो इस बात को इस तरह बयान करते हैं जैसे कूफा और बसरा वालों का मुतलक इसालत और फरइयत में इख्तिलाफ है भाई। बसरा वाले मुतलकन मस्तर को असल करार देते हैं और कूफा वाले मुतलकन फेल को असल करार देते हैं, हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं। और फिर जब दलाइल बयान करते हैं तो दलाइल में ये जिक्र करते हैं कि बसरा वाले मस्तर को इसलिए असल करार देते हैं कि मस्तर इश्तिकाक में असल है, यानी बसरा वालों की दलील क्या है कि मस्दर इश्तिकाक में असल है। कहते हैं हालांकि इसी में तो इख्तिलाफ है, जिसको तुम दलील जिक्र कर रहे हो वो क्या कहते हैं, फिर सुनो, वो क्या कहते हैं, बसरा वाले क्या कहते हैं कि मस्दर असल है। किस वजह से, दलील क्या है, क्योंकि मस्दर इश्तिकाक में असल है। भाई ये तो गलत तकरीर कर रहे हैं, इश्तिकाक ही में तो इख्तिलाफ है, आप उसको दलील बना रहे हो, बात समझ में आ रही है। तो वो कहते हैं जी कि बसरा वाले मस्तर को इसलिए असल कहते हैं कि मस्तर इश्तिकाक में असल है और कूफा वाले फेल को इसलिए असल करार देते हैं कि फेल इलाल में असल है। भाई तो असल जो इख्तिलाफ था उसको दलील के तौर पर बीच में जिक्र कर देते हैं। कहते हैं वह दर बयान इस्तेदलाल में गोयन, और इस्तेदलाल बयान करते हुए वो कहते हैं कि बसरियां बई जिहत मस्तर रा असल में गोयन, कि बसरा वाले जो है इस जिहत से मस्तर को असल कहते हैं कि फेल अज मस्तर मुश्तकस्त, कि फेल मस्तर से मुश्तक है। देखा दलील जिक्र कर दी, हालांकि इसी में तो इख्तिलाफ है। वह कूफियां बाई जिहत फेल रा असल में गोयन, और कूफा वाले इस जिहत से फेल को असल कहते हैं कि मस्तर ताबे फेल असदर एलाल, कि मस्तर फेल के ताबे है एलाल में। बाज मुहाकमा में कुनंद, उसके बाद मुहाकमा करते हैं। दलाइल क्या जिक्र की है, बसरा वालों की दलील क्या, मस्दर क्यों असल है, क्योंकि ये इश्तिकाक में असल है। कूफा वाले कहते हैं फेल असल है, क्यों असल है, क्योंकि ये एलाल में असल। फिर वही उलमा बगैर तहकीक के एक बात करते चले जा रहे हैं, आगे फिर फैसला भी करते हैं, इन दोनों में फैसला भी करते हैं। और क्या फैसला करते हैं कि भाई दोनों की बात अपनी जगह ठीक है, इश्तिकाक के एतबार से मस्दर असल है और एलाल के एतबार से फेल असल है। भाई कहते हैं हालांकि ये तकरीर सही नहीं है, सही तकरीर वही जो हमने बयान कर दी कि असल इख्तिलाफ तो इश्तिकाक ही में है। भाई बात समझ में आ गई। कहते हैं बाज मुहाकमा में कुनंद, बाज का माना है फिर, मुहाकमा का माना है फैसला करना। बाज मुहाकमा में कुनंद, फिर वो उलमा जो है वो फैसला करते हैं कि मस्तर मिन हैसुल इश्तिकाक असल अस्त, कि मस्तर जो है वो इश्तिकाक की हैसियत से असल है। वो फेल मिन हैसुल एलाल असल अस्त, और फेल जो है एलाल की हैसियत से असल है। वह असल हकीकत आन अस्त के तहरीर नमूदेम, मुसन्नी फरमा रहे कि असल हकीकत वो ही है कि तहरीर नमूदेम, जो हमने तहरीर कर दी, जो हमने लिख दी। बिल जुमला कहते हैं हासिल कलाम ये कि नजदे बसरियां शश इसम मुश्तकन। अब इधर देखिए भाई, हासिल कलाम क्या हुआ कि बसरा वालों के नजदीक बसरा वाले किसको इश्तिकाक में असल कहते हैं, मस्दर को। मालूम हुआ मस्दर मुश्तक मिन हो और फेल क्या है, मुश्तक। जबकि कूफा वाले किसको असल करार देते हैं, फेल को, तो फेल हुआ मुश्तक मिन हो और मस्दर क्या हुआ, मुश्तक। मस्दर क्या हुआ, मुश्तक। तो कूफा वालों के नजदीक मुश्तकात बढ़ गए, क्योंकि मस्तर भी क्या हुआ, मुश्तक हुआ। तो वैसे तो मुश्तकात छह शुमार करते हो, लेकिन कूफा वालों के नजदीक मस्तर को भी उसमें शुमार करो तो वो कितने हो जाएंगे, सात हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, यही बयान कर रहे हैं। कहते हैं वह बिल जुमला नजदे बसरियां शश इसम मुश्तकन, खुलासा ये कि बसरा वालों के नजदीक छह इसम मुश्तक हैं। इसमें फाइल हो, इसमें मफूल हो, इसमें जर्फ हो, इसमें आला हो, सिफत मुशब्बा हो, इसमें तफजील, ये छह इसम मुश्तक हैं बसरा वालों के नजदीक, और मस्तर क्या है, असल है। वह नजदे कूफियां और कूफा वालों के नजदीक हफ्त, सात हैं। भाई मुश्तकात कितने हैं, तो कहते हैं वनस दे कूफियां हफ्त और कूफा वालों के नजदीक सात हैं। शश मजकूर वयक मस्दर, छह जो ये मजकूर हो गए, वयक मस्दर और एक मस्दर। وہ اصل اختلاف در اشتقاق است، اور اصل اختلاف اشتقاق میں ہے کہ فعل از مصدر مشتق است یا مصدر از فعل، کہ فعل مصدر سے مشتق ہے یا مصدر فعل سے. وہ دلائل قوی یا مقتضی ترجیح ثانی است، اور قوی دلائل جو ہیں وہ دوسرے کی ترجیح کا تقاضا کرنے والے ہیں. بڑے قوی دلائل جو ہے وہ دوسرے کی ترجیح کا تقاضا کرنے والے ہیں. دوسرا کیا بھائی؟ پیچھے دو باتیں ذکر کی نا، کہ فعل از مصدر مشتق است، کہ فعل مصدر سے مشتق ہے یا مصدر از فعل، یا مصدر کس سے مشتق ہے؟ فعل سے. تو پہلی بات کس کی ہے کہ فعل از مصدر مشتق است، یہ کس کی ہے؟ فعل از مصدر مشتق است، کہ فعل از مصدر مشتق است، یہ پہلی بات ہے. یہ کس کا مذہب ہے؟ بصرہ والوں کا. یا مصدر از فعل، یا مصدر فعل سے مشتق ہے، یہ کس کا مذہب؟ کوفہ والوں کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ دلائل قویہ مقتضی ترجیح ثانی است، اور قوی دلائل دوسرے کی ترجیح کا تقاضا کرنے والے ہیں، دوسرے کی ترجیح کے مقتضی ہیں، کہ مذہب کوفیان است جو کہ کوفہ والوں کا مذہب ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اچھا چلیے بس بھائی، اب آئیے بھائی اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیں بھائی. افادہ، بصریین و کوفیین کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ فعل اصل ہے یا مصدر. عبارت مل گئی سب کو؟ کہتے ہیں افادہ، بصریین و کوفیین کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ فعل اصل ہے یا مصدر. پہلا قول کوفیین کا ہے اور دوسرا بصریین کا، اور اصل اختلاف اس میں ہے کہ آیا فعل ماضی کو مادہ و اصل قرار دے کر مشتق منہ کہا جائے، اور مصدر کو فرع اور اس سے مشتق، یا بالعکس. بس بصریین امر معنوی سے استدلال کرتے ہیں کہ معنی مصدری تمام افعال و اسماء مشتقہ کے معنی کا مادہ اور اصل ہیں، لہذا لفظ مصدر بھی تمام مشتقات کا مادہ اور اصل ہوگا. اور کوفیین امور لفظیہ سے استدلال کرتے ہیں، مثلا یہ کہ اکثر مصدر اعلال میں فعل کا تابع ہوتا ہے، اور اعلال امور لفظیہ میں سے ہے، لہذا مصدر کو لفظ میں فعل کا تابع اور اسے مشتق کہنا چاہیے. جناب استاذنا المرحوم مذہب کوفیین کو ترجیح دیتے تھے، اور فی الواقع یعنی واقع میں، اور فی الواقع دلائل قویہ مذہب کوفیین کے رجحان پر قائم ہیں. رجحان یعنی راجح ہونا، اور یعنی واقع میں قوی دلائل جو ہیں کوفہ والوں کے مذہب کے راجح ہونے پر قائم ہیں. آگے دیکھیے، اول یہ کہ بحث اشتقاق میں ہے، اور اشتقاق امور لفظیہ میں سے ہے، اگرچہ تعلق معنی سے بھی رکھتا ہے، لہذا فعل ماضی اور مصدر کے لفظ میں غور کرنا چاہیے کہ آیا لفظ فعل ماضی مادہ ہونے کی لیاقت رکھتا ہے یا لفظ مصدر، اور تأمل سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مادہ ہونے کی لیاقت لفظ فعل میں ہے، لفظ مصدر میں نہیں، اس لیے کہ وہ تمام حروف جو فعل ماضی میں پائے جاتے ہیں وہ مصدر میں ضرور پائے جاتے ہیں، ولا عکس، اور اس کا عکس نہیں ہے. آگے دیکھیے، نیز مصادر ثلاثی کے صرف سات وزن قتل، فسق، شکر، طلب، خنق، صغر، ہدن، اور تفاعل، تفاعل اور تفاعل. تو یہ ثلاثی مجرد کے یہ سات وزن ہیں بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سات وزن ہیں، فعل، 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 فعل اور فعل. یہ سات وزن جو ہیں، صرف یہ سات وزن مراد ہیں بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے بھائی، نیز مصادر ثلاثی کے صرف سات وزن قتل، فسق، شکر، طلب، خنق، صغر، ہدن اور تفاعل، تفاعل اور تفاعل کے علاوہ تمام اوزان میں مصدر کے حروف فعل ماضی کے حروف سے زائد ہیں، اور ظاہر ہے کہ مادہ ہونے کی لیاقت وہی رکھتا ہے جو تمام فروع میں پایا جائے، نہ کہ جو نہیں پایا جاتا. نیز مزید علیہ اصالت و مادیت کے لیے احق و الیق ہے نہ کہ مزید، اور فعل ماضی کے تمام حروف کا مصدر میں پایا جانا بالکل ظاہر ہے. اخشوشانہ کا واو اور ادہام ما کا الف جو اخشیشان و ادہیمام میں نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مصدر میں واو اور الف کسرہ ما قبل کے باعث قاعدہ کے مطابق یا سے بدل گئے ہیں. بس فی الاصل واو اور الف مصدر میں موجود ہیں، اور اگر مادہ مصدر ہوتا تو ماضی اخشہ شنا اور ادہائے مما آتی، اور اسی طرح تمام افعال و اسماء مشتقہ میں ہوتا، کیونکہ یا کو اخشہ شنا میں واو سے اور ادہامہ میں الف سے بدلنے کا نہ کوئی قاعدہ پایا جاتا ہے نہ کوئی سبب. اور تفعیل کے مصدر میں جو ماضی کا حرف مقرر نہیں ہوتا، محققین فرماتے ہیں کہ یا تفعیل کی اصل وہی حرف مقرر ہے، مثلا تحمید در اصل تحمیم دن تھا، دوسرے میم کو یا سے بدل دیا گیا ہے. اور مضاف میں اکثر حرف دوم کو دفع ثقل کے لیے حرف علت سے بدل دیتے ہیں، چنانچہ دس ساہا میں جس کی اصل دس سساہا ہے آخری سین کو الف سے بدلا گیا ہے. سوال: تمہارا یہ جواب تفعیل کے مصادر تبصرتوں و تسمیتوں و سلاموں و کلامن اور مفعلہ کے مصدر قتال و قیتال سے منتقض ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ان مصادر میں ماضی کے تمام حروف موجود نہیں. جواب: گفتگو اصل مصادر میں ہے جو باب میں کلیتن ہوتے ہیں، قلیل الوجود مصادر قابل لحاظ نہیں. پھر سلامن و کلامن کو تو اسم مصدر کہا گیا ہے، اور وزن تفعیلتن کی اصل تفعیل قرار دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ مثلا تسمیتن دراصل تسمیون تھا، یا حذف کر کے آخر میں تا عوض کی لے آئے اور واو رابعیت کے باعث یا سے بدل گئی. اور قیتال میں کسرہ ما قبل کے باعث وہ الف جو ماضی میں تھا یا سے بدل گیا، اور قیتال اسی کا مخفف ہے. پس جملہ مصادر میں ماضی کے تمام حروف ولو تقدیرن موجود ہیں. دوسرے یہ کہ فعل بغیر مصدر کے پایا جاتا ہے، جیسے لیسا وعسا، پس اگر مصدر اصل ہو تو وجود فرع بغیر وجود اصل کے لازم آتا ہے، اور مصدر بغیر فعل کے نہیں آتا. اور بعض مصادر کو جو عقیمہ کہہ دیا گیا ہے، مثلا متنو و تقسیم، کہ ان دونوں سے سوائے فاعل کے کوئی صیغہ نہیں آتا، تو ان کا ایسا ہونا مسلم نہیں ہے، یعنی ثابت شدہ نہیں ہے، تسلیم شدہ نہیں ہے، چنانچہ قاموس سے واضح ہو جاتا ہے. تیسرے یہ کہ بصریین معانی افعال و مشتقات کے لیے معنی مصدری کے مادہ ہونے کو دلیل اس پر بناتے ہیں کہ لفظ فعل لفظ مصدر سے مشتق ہے. اشتقاق لفظی کی حقیقت میں غور کیا جائے تو یہ بات باطل محض ہو کر رہ جاتی ہے. اشتقاق لفظی کی حقیقت یہ ہے کہ دو لفظوں میں لفظاً اور معنن مناسبت ہو، اور جہاں ایک لفظ سے دوسرے لفظ کو ماخوذ فرض کرنا آسان ہوتا ہے تو لفظ دوم کو لفظ اول سے ماخوذ اور مشتق قرار دے دیتے ہیں. برتنوں اور زیورات کو سونا چاندی سے ڈھالنے کی صورت یہاں نہیں کہ سونا چاندی کا مادہ پہلے علیحدہ موجود ہوتا ہے، اس میں تصرف کر کے برتن یا زیور بناتے ہیں، بلکہ مشتق و مشتق منہ کا تحقق باعتبار وضع و استعمال کے زمانے واحد میں ہوتا ہے. پس دلیل میں فعل کے مصدر سے اشتقاق کو صوغ الاوانی والحلی من الذهب والفضہ پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے. فائدہ: غیر محقق لوگ یہ اختلاف اور طرفین کے دلائل بیان کرنے میں عجیب خبط کرتے ہیں. وہ اختلاف مطلق اصالت و فرعیت میں ذکر کرتے ہیں، اور دلائل یوں بیان کرتے ہیں کہ بصریین اس لیے مصدر کو اصل کہتے ہیں کہ فعل مصدر سے مشتق ہے، اور کوفیین اس لیے فعل کو اصل کہتے ہیں کہ مصدر اعلال میں فعل کا تابع ہے. پھر محاکمہ کرتے ہیں کہ مصدر من حیث الاشتقاق اصل ہے اور فعل من حیث الاعلال اصل ہے، اور اصل حقیقت وہی ہے جو ہم بیان کر چکے. فی الجملہ بصریین کے نزدیک اس میں مشتق چھ ہیں: اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں اعلی، صفت مشبہ، اس میں تفضیل. اور کوفیین کے نزدیک سات: چھ مذکورہ اور ایک مصدر. اور اصل اختلاف اشتقاق میں ہے کہ فعل مصدر سے مشتق ہے یا مصدر فعل سے، اور دلائل قویہ ترجیح ثانی کے مقتضی ہیں جو کوفیین کا مذہب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.